वेलकम बैक टू मेरा अपनों के साथ, मैं हूँ आपका शुजा रजवी। आप देख रहे हैं PCN, आपका अपना नेटवर्क। मौजूद चल रहा है कारवान मैनेजमेंट के हवाले से। हमने बात की ऑन जाफरी से, समीना गौहर साहिबा से और साथ ही अली असगर से। अब बैठे हुए गजनफर साहब, जिनसे जिनका काम कारवान मैनेजमेंट में, यानी कि इस कारवान ऑफ प्राइड में पासपोर्ट की हैंडलिंग था, वीज़े की हैंडलिंग था, जो ईरान इराक वीज़े के सिलसिले में होती है, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहा जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे समीना गौर साहिबा से, कि वीज़े थे नहीं और हम जो है वो मेहरान बॉर्डर पर बैठे थे। तो आइए गजनफर से बात करते हैं, क्या मसला था वीज़े का? गजनफर, क्या प्रॉब्लम थी
वीज़े की? एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि मुझसे ऊपर एक और साहब थे जो कि अदनान साहब थे।
अदनान,
हाँ। इससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो देखे
हैं, यहीं साहब से सवाल कर लूँ, ये अदनान साहब का कारवान ऑफ प्राइड से क्या ताल्लुक?
इनको आउटसोर्स लिया गया था, मेरे ऊपर मतलब इनको लाया गया था, ये वीज़े के तमाम प्रोसेस वगैरह इनको करवाया था।
आपकी आपके ऊपर लाया गया था, ये कारवान का हिस्सा थे, ये तनख्वाह ले रहे थे कारवान से?
ये मुझे नहीं पता, ये सब मुझे नहीं पता। मेरे पास ऑन साहब ने कहा गया कि ये देखेंगे सारे ईरान की प्रोसेसिंग वगैरह जितने वीज़े की है वो देखेंगे।
ईरान, सिर्फ ईरान या ईरान दोनों?
ओनली ईरान,
सिर्फ ईरान,
ओनली ईरान। सही है ना, मुझे उनका काम करने का तरीका भी कुछ पसंद नहीं आया था।
एज क्या होगी अदनान?
एज 32-33।
हाँ, ऐसी
31
ऐसे,
तो बहुत यंग लड़का है ये।
लड़का है।
हम किसी साहब की बड़े उम्र की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक लड़का है।
मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि मैंने अन भाई से ये बात सुनी थी कि उन्होंने ये कहा था कि, और ये बात शायद इन लोगों के दरमियान की थी जो मेरे कान तक आ गई, कि अदनान जो है वो भी हायर्ड नहीं है।
हायर्ड नहीं है?
हायर्ड नहीं है,
ठीक है।
और अदनान से अली जाफर ने मेरे सामने कहा था कि बस तुम ऐसे मजाक में ऐसे होते ही बात की, भाई तुम तैयारी पकड़ लो, भाई ग्रुप के बाद पर तुम ये कमरा बनवाते थे तुम्हारा,
कमरा बनवा देते तुम्हारा।
तो वो इस तरह का एक माहौल था। तो मेरे मुझे ये फील आया कि शायद वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, प्राइड का हिस्सा नहीं है।
अदनान को, आपको, आपके ऊपर अदनान को भेजा गया था कि जनाब ये बेसिकली ईरान के वीजा,
मुझे उनको फॉलो करना है।
अच्छा,
ठीक ठीक है। मुझे उनको कुछ काम करने का तरीका काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक दिन ऑन भाई से भी ये डिस्कस किया था, मैंने कहा यार ये काम कैसे करा रहे हैं, मैंने मतलब कभी ऐसे काम किया नहीं है। तो वीज़ा की प्रोसेसिंग होती है, तरतीब से काम होता है। तो उन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट 3 से मतलब फाइनली 4 दफ़ा परफॉर्मर माने ईरान के।
एक सवाल ये कि आप पहले भी ये काम करते रहे?
मैं इनके साथ ही था, मतलब जो मैं
इन्हीं के साथ वीज़े के सिलसिले में पहले आप काम करते रहे?
डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेसिंग
में अदनान इन्वॉल्व नहीं होता था?
नहीं नहीं, वो 50-60 हमारे लोग जाते
ईरान के, हम वीज़े यहाँ से लेते नहीं थे, हम इराक से लेते थे। इराक की डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें।
अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं?
एक पॉइंट इसमें और भी मैं वो ऐड कर दूं कि अदनान का जो सबसे बड़ा इशू था ना, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम था उनका। वो मेरे ख्याल से ऑफिस में शायद ही कोई शख्स होगा ऐसा जिससे उसकी लड़ाई या झगड़ा मुझ समेत ना हुआ हो। तो
अच्छा,
ये और यही मामला जो है कॉन्सुलेट ने भी हाईलाइट किया था, जो हम तक बाद में पहुँची बात।
जब इनकी बात हुई थी वीज़ा कॉन्सुलेट से, तो उसने भी अदनान का ही नाम लेके बताया था।
मैं जब गई थी ना कॉन्सुलेट, तो मैंने वीज़ा ऑफिसर से बात किया अगर शफी से, कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे वीज़े क्यों नहीं दे रहे? तो उसने कहा कि डॉक्यूमेंट्स आती पाती हैं, इन्हें मिक्सचर हुए हैं। तो मैंने कहा बताएं, हम क्लासिफाइड करके आपको दे देंगे, रीज़न तो बताएं।
आप क्या कह रहे थे पासपोर्ट के हवाले से?
पासपोर्ट के हवाले से मैं यही कह रहा था, जो काम वो मुझसे ले रहे थे कि इस तरह से करो, मतलब परफॉर्मेंस उन्होंने ईरान के मुझसे 3-4 दफ़ा बनवाए। सही ना, मतलब मुझसे बोलते थे तो मैं और लोगों को बोलता था दूसरे के, भाई चलो परफॉर्मर बनाना शुरू करो। पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम में परफॉर्मर बनवाना शुरू करवाया कि मुझे फॉर्म रिसीव करने है, परफॉर्मेंस शो करा के 1200 लोगों के फॉर्म रिसीव करने। खैर वो परफॉर्मर बनवाया हमने। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जो बात हो रही है कि किसके पास तस्वीरें आती थी, पासपोर्ट किसके पास आते थे, आते फाइनली मेरे पास ही थे, लेकिन इस दफ़ा आए इस तरह से कि सबसे पहले मेरे पास आ रही है NICs आए सबसे पहले कि NICs हैं आशूरा ग्रुप की, ये रखो।
एक मिनट, NICs हैं आशूरा ग्रुप की, ये रखो।
जी जी,
यानी कि बंडल आ गया, बंडल आ गया पास कोई।
हाँ, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं भाई, ये रखो अभी।
ये अदनान ने दिया आपको?
नहीं, ये दूसरे जो लोग करते थे, मतलब जिसके रेफरेंसेस से लोग आते थे, जैसे ऑन भाई के रेफरेंस से आ गया, अली जाफर भाई के रेफरेंस से आ गए, आसिम भाई के रेफरेंस से आ गया, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से जो आते थे।
तो एक सवाल इसमें ये है कि जो आदमी आपके पास आ रहा है, जो मुझे कंफ्यूज कर दी है बात,
जी जी,
आप मुझसे कहेंगे जनाब आपको इराक जाना, ईरान जाना, जी आप बोले ये चीज़ें लेकर आओ,
थोड़ा जो मैं समझाऊंगा
कि जब मैं आया था तो उस वक्त तकरीबन 700 के करीब फिगर चल रही थी, 700 लोग हो गए जब मैं आया था। और उस वक्त जो मैं नोट कर रहा था वो ये था कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अच्छा आप NIC जमा करें, NIC कॉपी चाहिए, अप्रूवल हम NIC पे मंगवाएंगे।
मैंने उनसे जो पहली बात की थी कि अब ये मुझे जो जो बात मैं कह रहा था ठीक है, ये मिसमैनेजमेंट महसूस होती है, लेकिन मुझे कहीं बदनीयती महसूस होती है। इट मीन्स कारवान ऑफ प्राइड के अंदर कोई एक बदनीयत आदमी मौजूद है जो कुछ करना चाहता है, क्योंकि इस तरह से मिसमैनेजमेंट आप काफिले पहली दफा लेके नहीं गए, आप पहले भी काफिले लेके जा चुके हैं। अब ये आप हो रहा था, ये है
इस बात को आपसे सेकंड कर रहा हूँ आपकी बात को, जब ये पासपोर्ट हमारे पास आना शुरू हुए और क्वांटिटी हमने पहले डिसाइड किया 400 पासपोर्ट आएंगे हम उसको ख़त्म कर देंगे, जब 400 पासपोर्ट हुए तो मैं बड़ा एम्फसाइज था कि आप इसको स्टॉप कर दो, हम लोग इतने अहलियत नहीं रखते हैं कि इन 400 को भी लेके जाएं और लेके आ जाएं, ये भी बहुत है आशूर जैसी मखसूसी के ऊपर, 400 लोग भी बहुत है,
बिल्कुल
ठीक है, हम नहीं कैरी कर सकते, हम मैक्सिमम 50-60-70 लोग तो लेके जाते हैं, उसमें भी हम 3-4 वॉलंटियर लेके जाते हैं लोगों को संभालने के लिए। अब 400 का मतलब है कुछ 15-20 लोग हों एक्स्ट्रा इजाफी, तो हम उनको लेके जाएं। तो उसने बोला कि नहीं लो हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, मुझे बात एंड तक
अली
जाफर नहीं समझ आती थी कि नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
मेरा सवाल है आपसे, क्या इसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा था?
अली जाफर खुद
खुद,
हम उसको रसीद कार्ड जैसे आप आए,
आप मुझे बताएं कि आप ये देख रहे हैं काम गलत हो रहा है और ये हम नहीं, आपको यकीन था कि ये नहीं हो सकता काम?
यकीन तो नहीं था मुझे,
आप समझते आप कर सकते हैं,
हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे,
ये उम्मीद थी शायद हो जाए,
शायद हो जाए, मौला करम करें कुछ हम पे हो जाए,
मेरे को मौजा हो जाए,
कुछ मौजा हो जाए, कर लेंगे सब हो जाएगा।
सवाल है कि आपको नजर आ रहा गलत हो रहा है, आप उस पर स्टैंड नहीं ले रहे?
देखिए मैं बताऊँ ना आपको कि इस हद तक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था हमारा, मतलब मेरा, इनका,
अली जाफर पे
और आसिम का और मज़र का, इन दोनों की तो मैं बात नहीं करूँगा, कि हमें लगता था कि वो कर लेगा, क्योंकि बॉस जैसे मैं जिक्र किया याम फातमिया उसने किया, 100 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किए अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से।
सर बात ये होता है कि जो जो फ्रॉड लोग होते हैं उनका तरीका वारदात भी कुछ इसी तरीके से होता है।
ये चीज़ें अभी समझ में आ
रही के तौर पर आपसे कहूँ यार 2000 रुपये दे दो मैं वापस कर दूँगा, ले लिया फिर फ़ौरन वापस भी कर दिया, फिर बाद अवकात आदमी लेते लेते जो है ना वो जाए 50,000, कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका होता है यार पैसे जब लेता वापस कर लेता है, तो फिर बड़ी रकम लेके गायब होता है। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ?
देखिए अभी
अली जाफर के बारे में आपकी राय क्या है मुझे बता, बिल्कुल
टोटल अगेंस्ट हो गया हूँ, मुझे तो लगता है कि वो कम से कम भी 2-2.5 करोड़ पे लेके गया होगा,
बाकी पैसे,
बाकी पैसों का हिसाब ये रहा मेरे पास।
क्या हिसाब बताइए
इसके अंदर?
आप मुझे बताया कि जो आपने ईरान के अंदर जो चीज़ जो जगह जहाँ रहना बुक किया था उसकी रसीद आपके पास मौजूद है?
उसकी रसीदें अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, ऑफिस में मौजूद है, ऑफिस की चाबी नहीं है मेरे पास,
की रसीद है ऑफिस में, लेकिन अतीक में मैंने जो भेजे थे ना 3.5 लाख
और
बाकी भाई की पेमेंट उसमें अकाउंट में 5 लाख दिए थे,
और इराक में जो
2 लाख 5 लाख
इराक में फंदकुल हमीद होटल था हमारा
10,000 डॉलर।
अप्रूवल्स के लिए जो आपने पेमेंट की थी उसकी रसीदें मौजूद है पास?
जी मैंने ना हिसाब दिखाया,
ठीक
हिसाब है इसके अंदर, कुछ रसीदें ऑफिस में पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो हम तक हमारे पास एक्सेस नहीं है कि हम ऑफिस जाके वो रसीदें निकाल सकें। जो रसीद मुझे ईमेल पे आई थी वो मैंने ले ली है, बाकी जो ट्रांजेक्शन डिपॉजिट स्लिप जिन मुख्तलिफ हाथों से हुई बुखारी ट्रैवल्स को उनकी कॉपियाँ सारी हैं, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। इराक जो पेमेंट भेजी है उसकी रसीदें हैं इसके अंदर, ईरान जो पेमेंट करी है उसकी रसीदें हैं।
ये पैसा जाता चेक के थ्रू होगा या किसी डिमांड ड्राफ्ट? या
ईरान में टोटल कैश जमा होता है,
पैसा जो जमा होता था आपका पर्सनल अकाउंट था या कारवान ऑफ
प्राइड? कारवान ऑफ प्राइड का और अली जाफर का पर्सनल अकाउंट,
साइन उस पे सिर्फ वही करता था,
कारवान ऑफ प्राइड का मालिक सिग्नेटरी अली जाफर था तो अली जाफर ही करता था, और इसके अंदर
पैसा आपके पास कोई नहीं आता था?
कैश आया हमने अली जाफर को दे दिया, उसने बोला
आपने अपने पास कोई पैसा नहीं
था? अच्छा अगर आज पैसा होता तो हम रेंट के घर में रहते हैं, वहाँ पुलिस आई माले मकान नोटिस दे दिया भाई घर खाली करो,
आपको नोटिस दे दिया। अच्छा सुना ये कि आपने जो अपनी जमानत कराई है 25 लाख रुपए देके?
सुना तो मैंने भी यही है लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई, कोई
तस्दीक कोई नहीं हुई, मतलब आपने कोई जमानत नहीं कराई?
कुछ भी नहीं है
जमानत कबल गिरफ्तारी,
वो तक न्यूज़ चली थी तो मैं भी शौक हो गया था कि ऐसा कुछ न्यूज़ चल गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं।
तो आपके खिलाफ तो FIR भी कटी हुई है?
कहाँ है लोगों ने कॉपी दिखाई?
मेरे पास तो नहीं है लेकिन सुना ही है मैंने भी,
मैंने भी सुना है,
आपने भी सुना, लेकिन आप
जब मैंने सुनी सुनाई बात पे मैं जब हाई कोर्ट गया हूँ ہائی کورٹ میں جا کے جب جج کے سامنے بیٹھا ہوں تو جج نے بولا ایف آئی آر کا ہے.
آپ کیوں گئے تھے؟
مطلب مجھے بلایا نا کہ وہی ایف آئی آر کٹ گئی. میں علی جعفر.
کس نے بلایا تھا؟
وہ بھی ایک اسٹوری ہے.
اچھا
ٹھیک ہے, وہ بھی ایک اسٹوری ہے.
کسی نے آپ کو بلایا کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹائی اور کورٹ آ جائے؟
ہم میں سے کسی کا, مطلب ظاہریوں میں سے کہا, ایک صاحب نے کسی نے, کوئی ایف آئی آر کے سب انسپیکٹر ہوتے ہیں, وہ آیا آفس میں اور پاسپورٹ لے کے جانے لگے. جب ان سے پوچھ گچھ کی کہ بھائی آپ نے کوئی کارڈ, آفس کھلا ہوا تھا, 400-500 لڑکے موجود تھے, تو وہ پاسپورٹ لے کے جانے لگے. میں نے بولا اگر آپ ایف آئی آر سے ہو تو بھائی اپنی تصدیق کراؤ, کوئی کارڈ دکھاؤ, کچھ کراؤ, کیونکہ ایف آئی آر سے ہمارا بھی تھوڑا بہت پہلے ٹریول ایجنٹوں میں تو واسطے پڑھتے رہتے ہیں, تو کبھی بھی ایف آئی آر ایسے نہیں آتی ہے. باقاعدہ انویسٹیگیشن کی ٹیم آتی ہے, پھر وہ آپ کو بلاتی ہے, پھر جا کے وہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹتی, پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے. جب بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں, جب ہمیں معلوم پڑا کہ بھائی ہم تینوں کے نام پہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے,
آپ,
میں,
علی
جعفر اور عدنان.
عدنان ٹھیک.
اچھا ہم نے بولا کہ ایف آئی آر کاپی دو. جب ہم اپنے جو ہم نے وکیل کیا ہوا تھا ان کے پاس گئے تو انہوں نے یہ دیکھا اور بولا یہ تو فیک ہے سر,
ایف آئی آر فیک ہے,
کیونکہ ایف آئی آر کبھی بھی, یہ جو آپ نے انہیں سیشن لگائے ہیں, ایک تو یہ ایف آئی آر کے سیشن نہیں ہیں, دوسرا یہ کہ ایف آئی آر کرائم سرکل کبھی نہیں لکھتا جب بھی ایف آئی آر کاٹتا ہے, وہ اپنی ٹرمنالوجی کے بتا رہے ہیں.
ایف آئی آر کے کسی آدمی نے یا اس سے ریلیٹڈ کسی شخص,
جیسے میں بھی ایک ظاہر ہوں, میرا کوئی دوست ہے پولیس میں. اب میں بتاؤں نا کہ اتنے فونز آئے ہیں, کوئی آئی ایس آئی, کوئی ایم آئی, کوئی ایس ایچ او, کوئی ہلکا تو آیا ہی نہیں, کوئی ڈائریکٹر, کوئی پتہ نہیں کیا کچھ, کوئی گن مین, وہ ایس ایچ او بن کے بات کر رہا ہے, اب وہ ایم آئی, اب فون کے طرف ایم آئی ہے یا کوئی ہے مجھے کیا پتا. فون سب کے اٹھائے, جتنا بھی ہو سکا سب کو فالو اپ کیا. جب اپنے آپ کو ٹی وی میں دیکھا اس وقت موبائل بند کیا.
صحیح, یہ تو میں نے سنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے,
تب تک موبائل میرا کھلا ہوا تھا اور میں سب کو فیس کر رہا تھا. مجھے جو بھی فون آتا تھا میں ان کو اپنی لوکیشن بتاتا تھا کہ بھائی یہاں پہ کھڑا ہوں, اگر پکڑ کے لے کے جانا ہے تو پکڑ کے لے کے جاؤ, بند کرا دو اگر آپ کا اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو. مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک ہمیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا ہمیں, مطلب اب کھڈا تو ہم نے, کنواں تو ہم نے کھودنا ہے.
اچھا میں نے کسی سے سنا ہے کہ آپ نے ایک بہت زبردست قسم کا جملہ بولا تھا, آپ نے علی جعفر نے, کہ میں ان سب کی دکانیں بند کرا دوں گا. آپ نے کوئی ایسا جملہ بولا تھا کاربن والوں کے لیے؟
نہیں, علی جعفر نے وہ اکثر بولتا تھا کہ سب کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, سب کی دکانیں بند کرا دوں گا, سب کی دکانیں بند ہو چکی ہیں. پھر ہمیں بھی مختلف ذرائع سے فیڈ بیک آنے لگا کہ بھائی ایران کونسلیٹ میں لیٹر جمع ہوئے ہیں آپ کے خلاف, اس میں بڑے بڑے نام دیے گئے. ٹھیک ہے, تو ایک سوچ جاتی ہے شاید جمع ہوئے ہوں, ایک سوچ جاتی ہے کہ ایران کونسلیٹ کو ضرورت ہی کیا ہے لیٹر دیکھنے کی, تو ڈینائی اور ایکسیپٹ کا کہانی ہے نا وہاں پہ, تو ڈینائی کرو یا ایکسیپٹ کرو, ایک طرف کر دو.
ہاں تو علیحدہ موضوع. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب اچھا بہرحال اب یہ ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ آپ یہ کہ یہ تو بالکل اظہر من الشمس ہے کہ کاروان کے لوگوں سے مسٹیکس
ہوئی ہے,
مس مینجمنٹ ہے, اور آپ نے کوئی بھی طریقہ کار اس کو رکھنے کا, جمع کرنے کا, فارم لینے کا, ایکسیپٹ کرنے کا نہیں تھا.
بلنڈر
چیزیں جو ہیں نا بالکل پھیلی ہوئی تھیں. بقول علی اصغر کے تصویریں کا بنڈل الگ رکھا ہوا ہے, اور شناختی کارڈ کا بنڈل الگ رکھا ہے, پاسپورٹ الگ رکھے ہیں. ایسی صورت میں ایران کونسلیٹ کیا, کوئی بھی کونسلیٹ کتنی بڑی سورس آف ویزا دے ہی نہیں سکتا. یہ بات
ایران
سب سے بڑی امپورٹ مسٹیک جو جس سے زائرین نے بہت زیادہ سفر کیا, کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اور آپ مہران بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. آپ سب کی بات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں پیچھے کوئی ایک بد نیت آدمی موجود ہے جس کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے. دو نام ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جعفر نقوی صاحب کے لیے اس شخص نے کہا کہ جو وہاں پہ بغداد میں آفیشل تھا, کہ ہمارے پاس بغداد میں کسی آفیشل نے کہا ہمارے پاس اپروول ہے ہی نہیں, جبکہ جعفر نقوی صاحب نے آپ کو اپروولز دی ہیں. اچھا دو باتیں, یا تو وہ اپروول, اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اپروول جعلی ہے, اور اگر اپروول کا کوئی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی پیمنٹ ہوئی ہے, پیمنٹ نہیں ہوئی تو پھر وہ جعلی ہے. اب یہ جعفر نقوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا سچویشن ہے کیا. علی جعفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
علی جعفر دیکھیں, میں سال ہی ہوا ہے میں بتا رہی ہوں نا, مجھے جوائن کیے ہوئے, یہ میرے محلے میں ہی رہتے تھے ان کے, میں مدرسے پڑھتی تھی ان کی والدہ سے کافی میری یار, تو اس نے مجھے جیسے اپنی والدہ سے ذکر کیا تو کہ مجھے اس طرح سے کارما کا کام شروع کروں, آپ کی نظر میں کچھ ذاکر ہیں, کیونکہ جو لیڈیز کو ڈیل کر لیڈ کرے نا, میں چاہ رہا ہوں لیڈیز کریں, مجلسے بھی پڑھیں اور لیڈیز کو ہینڈل کریں سب. تو ان کی امی نے مجھے کال کی, میں گئی, میری بات چیت ہوئی. تو مطلب آپ ایران میں رہی؟ میں کہا ہاں میں ایران میں رہی ہوں, پرشین وغیرہ آتی ہے, کہاں آتی ہے. تو ابھی پھر آپ جو کہیں آپ کو پوسٹ, میں کہا پوسٹ ووسٹ نہیں ہے, ابھی کام تو شروع ہوا, ابھی دیکھیں تو آپ میرا مطلب ورک تو دیکھیں ابھی, تو کیا پوسٹ ہو. انہوں نے پھر اپنے گھر میں میری میٹنگ کے ایک ہفتے بعد اپنے گھر میں لیڈیز آفس کھولا. ابھی آفس نہیں لیا تھا ہم نے, منور چوری والا جو جس میں ہم لوگ تھے, لیڈیز بھی آتی تھیں. ویسے ظاہر یہ مہینہ تھا شوال, شوال کا مہینہ, تو شوال ذکا ذلحج, ہمارا پہلا گروپ محرم کا جانا تھا عاشور کا. تو ان دو مہینے میں ہم نے جیسے گفتگو کی, لوگوں کو ایس ایم ایس کیے, اس کے بعد پین فلیکس لگے اور اس میں پھر آنا شروع ہوئے لوگ.
چلے بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے میڈم, بات صرف اتنی سی, آپ اس کے بارے میں جان کیا؟
نہیں دیکھیں, جب اس کے گھر میں آفس کھلا نا تو اس طرح مجھے ہوا کہ ظاہر ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ پہلا تجربہ تھا میرا, تو گھر کا ماحول تھا بہت اچھا تھا. اس نے ہم لوگ کو تو سیلری پہ رکھا تھا, صحیح ہے نا, اب 10 مہینے سال ہو رہا ہے, پراپر سیلری نہیں دی,
پراپر سیلری نہیں دی.
جب ضرورت ہوئی آپ نے کہا تو چلو 10,000 دے دیے, 15,000 دے دیے, یہ والی کہانی تھی. اور پہلے بھی ایسا ہوا جب میں گروپ لے کے گئی تو میرے ہاتھ میں جیسے ہوتے نا قافلہ لے کے جا رہی ہوں, واپس لے کے میں نہیں آنا ہے نا, ان لوگوں کو وہاں پہنچنا نہیں ہے علی جعفر کو, تو آپ پوری پیمنٹ آپ دے کے بھیجے نا تاکہ میں وہاں پریشان نہ ہوں. پہلے بھی ایسا ہوا کہ آپ جب
بخاری ٹریول میں بھی بنگلے کاغذات وغیرہ رکھوائے
جی, کسی کے ہمیں رکھوائے گئے, وہ شروع کے لیے کیونکہ وہ ٹکٹ ایشو نہیں کر رہا تھا.
تو کس نے رکھوائے ہیں؟
میں نے علی جعفر کی کہنے پہ.
کیوں رکھوائے ہیں آپ؟
اچھا, ہم نے سوچا یہ تھا کہ ظاہر ہی چلے جائیں, ہم تو پھر لڑتے مرتے,
وہ سیلری نہیں دے رہا آپ کو.
ٹرسٹ کا لیول
آپ کو پتا نہیں کہ
سر میں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس قسم کا ٹرسٹ ہے, یعنی کہ کنٹینیوس آپ کو ایک چیز غلط نظر آ رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے.
لیکن ہم لوگوں کو اس میں ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں.
آپ مثال کے طور پہ آپ کا بیک گراؤنڈ ٹریول ایجنسی کا کوئی اتنا کوئی ایک عام آدمی تو نہیں ہے جیسے صاحب کو ٹریول ایجنسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوتا ہے, ٹکٹ کیسے بک ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہوتے ہیں. یہ آپ کا اتنا, آپ کا اتنی گڈ ول ہے کہ آپ کے نام کے اوپر بخاری ٹریول ٹکٹ ایشو کر رہا ہے, تو آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا.
نہیں
سمپلی آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ قافلہ لے جا چکی ہیں, آپ کو یہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ یعنی کہ میرے پاس ویزا نہیں ہے, میں مہران بارڈر پہ لے کے جاؤں.
ویزا کہاں نہ بھیج رہا ہوں, لاسٹ فلائٹ میں ساتھ ہی بارڈر کراس کرنا ہے. جب میں نے کہا ویزے کا کیا ہوا, اگلی فلائٹ میں بھیج دوں گا.
کیوں اگلی فلائٹ پہ بھیجوں گا؟ آپ نے سوال نہیں کیا, تم اگلی فلائٹ پہ ابھی کیوں نہیں
بھیجے؟ ملے نہیں تھے اس کو جعفر نقوی سے,
رینڈملی ویزے لگے ہوئے تھے جو آئے تھے نا, مینوفیکچر جو آئے تھے, تو کچھ لوگ جو تھے وہ یہیں پر ہی تھے, بنا سلار کے آپ انٹری نہیں کر سکتے وہاں کے, تو کچھ لوگ یہاں پہ تھے اور کچھ لوگ اس میں سے, زیادہ تر جو ویزے جو آئے تھے وہ سب لوگ یہیں پر تھے موجود, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے جیسے 10 لوگ ہیں یہاں, 10 لوگ وہاں پر ہیں, باقی 40 یہاں پر.
کیوں ایسا کیوں ہے؟
فلائٹ اس طرح سے
رینڈملی بعد میں ویزا بعد میں آیا, لوگ جانے کے بعد ویزا آیا.
یہ چیزیں ہم نے جو جمع کرائے پہلے ایران میں وہ اکارڈنگ ٹو اپروولس کرائے,
ہاں
اپروول کے حساب سے جمع کرائے گی, اسی حساب سے آتے رہیں گے فلائٹ اسکیڈول پہ.
ذہن میں یہ تھا کہ
نہیں آیا ویزا تو انہوں نے ہمیں پاسپورٹ بھی رینڈملی دیے, اور دینے کا وعدہ دادا تھا دیے کم, ڈیلی کی ایکسرسائز تھی.
ہم نے بات کی ہم جعفری سے, سمینہ غور صاحبہ سے اور دیگر ان کے آفیشیل سے. اب ہمارے پاس کچھ وکٹمز بیٹھے ہیں جو ظاہر ہیں, جو ان کے ساتھ گئے تھے اور وہ کن پریشانیوں میں ایران میں رہے ہیں یا کیا حالات تھے ان کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر صاحب. ضمیر صاحب بہت شکریہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لے کر آئے. علی بھائی آپ یہاں ہماری دعوت پہ تشریف لے کر آئے.
عظمت علی,
عظمت علی صاحب
بہت شکریہ.
تو پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ابھی ادھر آئے. میں آپ سے سوال شروع کروں گا ضمیر بھائی, کیا ایران کے اندر جب آپ گئے ہیں تو کیا پرابلمس آپ نے فرام دا ڈے ون فیس کی ہیں؟
ہم لوگ یہاں سے ایران پہنچ گئے,
میں تھوڑا سا پہلے چلا جاؤں, تھوڑی اذیت آپ کو جو یہاں گزری ہے یہ آپ بتائیے کیا اذیت تھی آپ کی؟
یہاں یہ اذیت گزری کہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو چکی تھیں, کسی کو کسی فلائٹس کا پتہ نہیں تھا. ہر وہ شخص جس نے کاروان پرائڈس کے ساتھ سفر کیا اور زیارتوں کے لیے چلا, اس کو یا تو 2 گھنٹے پہلے پتہ چلتا تھا या एक घंटा पहले पता चलता था कि एक घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट है।
अच्छा, एक घंटे बाद फ्लाइट
और आपने रास्ते से पासपोर्ट उठाना है या टिकट उठाना है या आपको आप पहुंच जाएं एयरपोर्ट किसी भी तरह और आपको वहां के ऊपर पासपोर्ट और टिकट मिल जाएगा और आप एंटर हो जाएंगे। यहाँ तक भी ऐसा हुआ है कि जिस फ्लाइट से मैं गया था उस फ्लाइट में ऐसा भी हुआ है कि हम काउंटर को रोक के खड़े हुए हैं, एमिरेट्स वालों से मिन्नतें कर रहे हैं कि रुक जाइए अभी तीन आदमी और आ रहे हैं जो ऑफिस से उठ के आ रहे हैं। उनको ऑफिस में पता चला कि एक घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट है, तो बेचारे ऑफिस से भागते थे और वहाँ पहुँचते।
ठीक,
खैर बहरहाल जिस तरह भी हम ईरान पहुँच गए। ईरान पहुँचने के बाद हम कुम पे, हम पहला स्टे हमारा कुम था, कुम हम वहाँ पहुँचे तो हम उनसे पहले वो ऑलरेडी 104 107 लोग पहले पहुँच चुके थे।
ठीक,
समीना गौर साहिबा वहाँ पर थी, तो मुख्तलिफ रेस्ट हाउस जिस तरह के घर बने होते हैं कुम के अतराफ में, बिल्कुल हरम के पीछे छोटे गलियों के अंदर जिस तरह घर बने होते हैं उस तरह के घर अरेंज किए हुए थे।
ठीक,
खैर सब लोग सेटल हो गए।
अच्छा, वो घर बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे?
बड़े बड़े हॉल नहीं थे, मकसद कमरे बने हुए थे, कमरों के अंदर कारपेट्स थे, उसके अंदर 8-8, 10-10 लोग वहाँ पे रह रहे थे।
अच्छा,
कहीं पर अटैच बाथ था और कहीं पर कॉमन वॉश था।
अच्छा,
वो सब यूज़ करते थे। खैर वहाँ पर सेटल हो गए, जो भी है बहरहाल चलता रहा, थोड़ा सा एतराफ़ की ज्यारतें हुई, सारा कुछ करवाया, ये सब होता रहा। उसके बाद कारवान के अंदर थोड़ा सा एक ग्रुप का और इनका समीना गौहर का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि मकसद मैनेजमेंट के हवाले से,
मतलब लोगों का एतराज़ था,
लोगों का एतराज़ था कि मकसद सही चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल समीना गौहर ने मुझसे बात करी कि ये आप समझाएं थोड़ा सा लोगों को, ये वो बेसिकली उसमें भी मेरे दोस्त थे और यहाँ पे भी मेरे दोस्त थे। तो मैंने एक दिन हॉल के अंदर इन सबको बिठाया और बिठा के वहाँ पे इनका पैचअप करवाया कि हम सब शियत बेस के ऊपर हैं और हम लोग सब जाहिर हैं, मोमिन हैं, हमें आपस में नहीं करना चाहिए, हम लोगों का सबका मकसद एक है।
सही,
खैर वो सारा कुछ हो गया और फिर बाद में चीज़ें अच्छे तरीके से चलने लगी। ये सारा कुछ चलते 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 6 मुहर्रम आ गया। अब हर आदमी की किसी भी मोमिन,
आप पहुँचे कितनी मुहर्रम को?
हम पहुँचे 2nd मुहर्रम।
2nd मुहर्रम, ठीक,
6 मुहर्रम हो गए। किसी भी मोमिन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मेराज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इससे बड़ी उसकी कोई मेराज नहीं है। किसी भी मोमिन की पीक है वो, हाई
शौक और दिल में तमन्ना तो यही
सबसे बड़ी तमन्ना, यानी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश।
यही शौक लेके गए थे आप?
यही शौक लेके गए थे। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बेचारे व्हील चेयर्स के ऊपर थे, ड्रिप्स थी, मास्क लगा के चल रहे थे और आई थिंक कि वो मेरे ख्याल में शायद
दो व्हील चेयर्स
ऐसी भी थी कि जो मकसद हमसे कहते थे सिर्फ एक झलक ज़ियारत इमाम हुसैन करवा दो, उसके बाद बेशक हम मर जाए। ऐसे लोग भी हमारे साथ थे और जिनकी व्हील चेयर्स हम चलाते थे, सामान उठाते थे, सब चल रहे थे। 6 मुहर्रम को जब हुआ कि मकसद अप्रूवल्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था इनके पास, इनके पास 6 मुहर्रम की सुबह हमें पता चला कि इनके पास मोबाइल में इनके व्हाट्सएप के ऊपर अप्रूवल्स पड़ी।
तो आप मोबाइल भी ज़ियारत करें फिर?
मैंने समीना गौहर को लिया, समीना गौहर को लेके मैं तकरीबन 1 किलोमीटर वहाँ से दूर गया।
कहाँ गए? सॉरी,
कुम के अंदर 1 किलोमीटर दूर गए एक कैफ़े हाउस के अंदर।
अच्छा,
वहाँ जाके हमने उनसे खातून से रिक्वेस्ट करी, उस सारे इनके मोबाइल के व्हाट्सएप को उसके ब्लूटूथ से उसके मोबाइल पे शिफ्ट किया और वहाँ से सिस्टम से उसके प्रिंट आउट निकाले।
ठीक,
39 पेजेस का एक सेट बना जिसकी हमने कॉपीज करवाई। वो अप्रूवल्स लेके हम फिर वापस आए तो आगे इन्होंने,
अभी तक आपको ये इत्मीनान होगा कि मैं इराक जाऊँगा?
हमें इत्मीनान क्या हुआ, हम तो खैर फर्स्ट टाइम गए थे, हमें नहीं पता था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये आधा वीज़ा है और इसी अप्रूवल पे हम निकल जाएंगे करबला, कोई मसला ही नहीं है। अब बात हो गई कि मेहरान बॉर्डर चलते हैं और मेहरान बॉर्डर चल के वहाँ से हम एंट्री देंगे करबला के लिए। इन्होंने कहा कि जनाब मेहरान बॉर्डर तो चले जाते हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मेहरान बॉर्डर के।
मेहरान बॉर्डर
से ही पैसे खत्म हो चुके थे इनके पास। इन्होंने कहा मेहरान बॉर्डर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास।
अच्छा, मतलब कुम में पैसे खत्म हो चुके?
कुम में ही पैसे खत्म,
उसका तो इजहार कर चुके हैं।
कुम में पैसे खत्म हो गए इनके पास।
जी जी,
और बकौल इनके कि ये 10वां काफिला है इनका।
जी जी,
ठीक है। जो जो शख्स 10 काफिले लेके जाता है वो बहुत मैच्योर होता है।
बिल्कुल, ये बात तो मैंने इनसे कही है,
अनमैच्योर नहीं होता।
बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी।
इन्होंने कहा कुम में मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मेरे पास तो मेहरान बॉर्डर जाने के पैसे नहीं है। हमने तमाम ज़ायरीन से बात करी और ये ख़ुद इस चीज़ की गवाह है कि किस तरह लीड किया मैंने वहाँ पर, सारे लोगों को मैनेज किया, सब कुछ किया। 1200 रुपये पर हेड हर आदमी के 5 रुपीज़ सब ने जमा किए और जमा करके, एक्सक्यूज मी, मुझे बात
किस सिलसिले में?
बहरान बॉर्डर जाने के लिए पैसे जमा किए।
अच्छा वो पैसे
ट्रांसपोर्ट,
अच्छा वो पैसा आपने अरेंज किया?
जी वो सब
जायरीन ने अरेंज किया,
जायरीन ने अरेंज किया। हमने
1200 रुपए पर बंदा,
1200 रुपए पाक रुपीस पर हेड हमने जमा किए, जमा करके इनको दिए कि ये बसों का किराया दे दें आप ताकि हम मेहरान बॉर्डर पहुंच जाए।
ठीक है, लेकिन सर मुझे एक बात ये बताइए कि जब वीजा नहीं है तो फिर हम मेहरान बॉर्डर जा क्यों नहीं? तो
जा इसलिए रहे हैं कि इन्होंने कंफर्म किया कि ये जो अप्रूवल्स हैं ये आधा वीजा है।
आधा कर लेंगे,
आधा तो मैं जाके कर लूंगी, मैं 10 काफले ले जाकर जा
करूंगा।
मैं 10 काफले लेके जा चुकी हूँ और मैं जाके वहाँ बात कर लूंगी। मेरे पासपोर्ट जब वो देखेंगे और मेरा रजिस्टर्ड है नाम वहाँ पे एज ए सालार, और मैं खुद जाके वहाँ पे बात करूंगी और मैं सबको अंदर मूव करवा लूंगी, वहाँ पे सबके वीजे लगवाना कोई मसला नहीं। खैर हम चले गए, हमने साहब 1200 रुपये हर जाहिर ने इनको दिए, बसें मूव नहीं करी उस वक्त तक जब तक कैलकुलेशन नहीं हो गई, सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं हो गया। हम चले गए वहाँ से मेहरान, मेहरान पे रायदारी भी हमारी सारी बसों को उतार दिया गया। रायदारी और मेहरान बॉर्डर का 11 किलोमीटर का फासला है, 11 किलोमीटर पहले हमें रायदारी पे सारे काफले को उतार दिया गया, सारी 10 की 10 बसों को। वहाँ से मैं, समीना गौहर और दो लोग और हमारे साथ थे, उनका नाम आई थिंक मुझे याद नहीं अभी, हम यहाँ से गए हैं मेहरान बॉर्डर। और मेहरान बॉर्डर जो हमारे पास अप्रूवल का सेट हमने बनवाया था 39 पेजेस का, वो हमारे पास था। हम मेहरान बॉर्डर पहुँच गए, मेहरान बॉर्डर पहुँच के समीना गौहर एक रूम में गई, इन्होंने
सॉरी वो टैक्सी का खर्चा लगेगा,
टैक्सी का किराया दिया इन्होंने।
अच्छा मैडम दिया,
मैडम ने टैक्सी का किराया दिया।
एक ही टैक्सी गई होगी?
एक ही टैक्सी गई, हमने रिटर्न पे करी थी, उसे बुक करा था आने जाने के लिए।
अच्छा ठीक,
ये वहाँ पे चली गई। उसके बाद ये मेहरान बॉर्डर पे जब सुख हम लोग अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद हम
बेसिक आपका मकसद ये था कि आप वहाँ जाके वीजा लगवा लें ताकि सब लोग एंटर हो जाए,
अप्रूवल को चेक करवाने के लिए और सारा कुछ करने के लिए बात करने के लिए।
ये पूरा काफिला जो पीछे रुका,
पूरा काफिला राहदारी के ऊपर बैठा हुआ।
ठीक है
ठीक है, कौन किस तरह खा रहा है, किस तरह पी रहा है, कुछ नहीं पता, वो सब इंडिविजुअल अपने तौर पर।
इवन आप बस में भी कुछ खाने पीने का सामान नहीं लाए?
कुछ भी नहीं, सब अपना खुद कर रहे थे।
और बच्चे भी थे आपके साथ?
सब कुछ थे, बच्चे मरीज बूढ़े सब थे। हम वहाँ पहुँच गए, उसके बाद ये एक रूम में गई, वहाँ से वापस आ गए, कहेंगे नहीं दूसरा रूम है, ये दूसरे रूम में अप्रूवल लेने चली गई, वहाँ से फिर वापस आ गए। इतने में हमें लाहौर काफले का एक मातमी हमारा साथी वहाँ पर हमें मिल गया, उसने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, हमने कहा यार इस तरह वो हम अप्रूवल लेके आए हैं उसकी चेक करानी है, तो उसने कहा अप्रूवल यहाँ पे थोड़ी होगी, अप्रूवल तो इराक के बॉर्डर पे होगी। इतने में ये तीसरे रूम से वापस आ गई, क्योंकि 10 काफले ले जा चुकी थी, इनको पता था कि अप्रूवल कहाँ से चेक होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन ऑफिस से वापस आ गई, और वापस आने के बाद फिर इनको बताया कि भाई आप तो वहाँ जाइए, वहाँ से अप्रूवल करवाइए। ये तकरीबन 2.5 घंटे के बाद वापस आई,
मेहरान क्रॉस किया होगा,
मेहरान क्रॉस करके इराक में,
इराक बॉर्डर में।
फिर ये 2.5 घंटे के बाद वहाँ से वापस आई, 2.5 घंटे हम बैठे रहे, हम यहाँ बैठे रहे और राहदारी के ऊपर पूरा काफला बैठा रहा,
और मैडम जो है 2.5 घंटे,
मैडम 2.5 घंटे के बाद वापस। अच्छा कुंभ के अंदर जो है वो हमारे पास एजेंट आ रहे थे, जो हमसे कहते थे कि हम आपको बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, जिसमें महबूब नाम है उनका, पाराचनार के रहने वाले हैं। खैर वो ऑलरेडी मौजूद थे मेहरान के ऊपर, फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि जब ये वापस आएँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि इनको टिक करके ले आएँ, जो 600 लोग आपके पास हैं इनको मार्क करें,
इन 1200 को तो लिस्ट
1200 में से 39 पेजेस में से आप 600 को मार्क करें,
मार्क कर। ठीक,
हम उसी टैक्सी में वापस गए, उस टैक्सी में वापस गए और जाके हमने बहुत मुश्किल से, आप खुद सोच सकते हैं इतने लोगों में 39 पेजेस में 1200 लोगों को मार्क कर, हमने उनको 1200 को बारह किसी भी तरह मार्क किया, मार्क करके मगरिब हो गई। मगरिब हुई फिर हमने टैक्सी करी, और टैक्सी करके हम फिर वापस आए, वापस मेहरान में आ गया, मेहरान में आ गया, थोड़ी सी मार्किंग और बाकी थी, हमने सारे बहरहाल मैनेज करके इनके दिया कि जाए अब आप करवा के लें। इतने में उन्होंने कहा कि यार काफले वालों को बुला लो, क्योंकि राहदारी के ऊपर बैठे हुए रात होने वाली है। पूरा काफला जो है वो मेहरान बॉर्डर पे पहुंच गया।
कैसे पहुंचे? बसों में?
बसों में अपने पैसे दे के,
अपने पैसे,
फिर प्लस ये कि
राहदारी 1200 से
वो सब कुछ अलग है,
मजीद ऐड हो रहा, कितना
मजीद ऐड हो रहा, वो मुख्तलिफ रेट्स देते, क्या कोई 30,000 तुमान, कोई 15,000 तुमान,
वो सब कलेक्शन हुआ होगा,
कलेक्शन हो गया। और हर बस से उन्होंने जो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं, वो ब्लैक शलवार घेर वाली पहन के खड़े होते हैं, उन्होंने उनसे टिप भी ली,
समझ गया,
उन्होंने उनसे पैसे भी लिए, उनका जाहिर हो गया, लेकिन हमारा हिस्सा
नहीं होगा, चलो अब हमें इराक में
हमारा हिस्सा दो, जाहिर है आप कुछ भी हमारा हिस्सा दें, वो हिस्सा भी उनको दिया गया। फिर खैर बारह लिए पहुँच गए। अब जब ये पहुँच गए वहाँ पर सारा कुछ हुआ, तो इन्होंने मुझसे कहा कि यार आप ऐसा करें कि आप सारे काफले को पीछे लेके आएँ, और आप सारे काफले को लेके चलें, और मैं जो हूँ पीछे बाद में आती हूँ। मैंने कहा अगर आप लीड नहीं करेंगी, आप सालार हैं, तो पीछे कौन आएगा? और दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं होंगी और ये बगैर वीज़े के ये 1200-1600 लोग अंदर जा रहे हैं, आप पीछे से वापस टैक्सी में चले जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? मैंने कहा पहली एग्ज़िट आप करवाएं। मैंने कहा इनके पासपोर्ट में पहली एग्ज़िट करवाई। मैंने कहा आप पहले एग्ज़िट करें, बाद में पूरा काफ़िला मैं लेके आ रहा हूँ। इनको एग्ज़िट करवा के अंदर भेजो और मैं पूरा 600 का 600 काफ़िला लेके सबसे आखिरी आदमी मैं था जो ईरान के बॉर्डर से एग्ज़िट लगवाई जिसने। अब हम बॉर्डर पे
आपकी इराक में एंट्री हो गई?
इराक में एंट्री हो गई हमारी,
एग्जिट लग गया था।
एग्जिट लग ईरान के बॉर्डर से हम
क्रॉस कर गए।
अब हम आ गए अनकाउंटेबल एरिया के अंदर जो ना ईरान में है ना इराक में।
ठीक है,
अब हम बीच के पैसेज में पड़े हुए
नो मैन्स लैंड।
ठीक है, हाँ उसके अंदर पड़े हुए हैं। वहाँ पे ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है। ईरानी उधर नहीं जाने देते, इराकी उधर नहीं जाने देते। बीच में वो पड़े हुए 600 लोग। 600 लोग किस तरह रह रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह पी रहे हैं, मोहतरमा कह रही थी बिस्किट अरेंज कर दिए, सारा कुछ कुछ नहीं था ऐसा। ना कोई पानी, ना कोई बिस्किट, कुछ नहीं।
अच्छा, बताई थी कि वहाँ से खाना भी अरेंज हुआ था?
बताता हूँ मैं आपको, ये सारा कुछ जो है ये सब इंडिविजुअल हो रहा था। जिसके पास जो कुछ था, तबर्रुक जिसके पास था, जिसने तबर्रुक भी देना था, सब ने अपने अपने बैग खोले और जिन बेचारों के पास जो कुछ
अज़ादारी
का सारा पूरा माहौल बना दिया उन्होंने। बिल्कुल आपको लग रहा होगा जैसे आप 7 में बैठे हैं।
अच्छा,
ठीक है। उसके बाद जो है वो वहाँ पे कुछ चाय वाय का इंतजाम लोगों का था, सबील का था, वो सब उन्होंने अरेंज कर लिया वहाँ पे। उसके बाद हमारी रात में बातचीत होती रही, सारा कुछ होता रहा, बातचीत चलती रही, लाइनें लग गई, लाइनें भी ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कहा पड़े रहो, सब कोई अपनी अपनी जगह पर ज़मीनों पर पड़ा हुआ। आंधी आ गई, बारिश हो गई, सब कुछ हुआ, लोग पड़े हुए। सुबह हो गई,
शेड नहीं था ऊपर,
थोड़े से पैसेज के ऊपर शेड है जिसमें लेडीज़ को हमने कर दिया था और मरीजों को कर दिया था,
लोग
बुजुर्ग थे, बाकी कुछ भीग रहे हैं, कुछ
सामान
कहीं पे नीचे है, सामान भी पड़ा हुआ अंदर शेड के अंदर, सामान डाल दिया था। सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है, आवाज़ आती है कि नहीं अब बात हो गई है और सारा कुछ हो गया। और महबूब एजेंट भी बात कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इतने में महबूब एजेंट साहब जो है वो पारा चना रही, उन्होंने इनसे पहले भी एक काफ़िला जो है एंटर कराया, वो था राणा इलियास का, लाहौर का काफ़िला। राणा इलियास का काफ़िला जब वो अंदर लेके जा रहे थे तो उसके अंदर 6 लोग फेक भी जा रहे थे, जो कि आगे बॉर्डर पर पकड़े गए और उन्होंने धक्के मार के महबूब एजेंट को बाहर निकाल दिया, जिस एजेंट के थ्रू हमने जाना था उस एजेंट। अच्छा। को इन्होंने धक्के मार के ईरानियों ने और इराकियों ने बॉर्डर से बाहर निकाल दिया और वो जो लोग जा रहे थे उनको भी सबको बाहर।
मतलब ये आपके सामने का
सब कुछ हमारे सामने।
अच्छा,
2 घंटे के लिए उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बॉर्डर सील कर दिया।
अच्छा,
2 घंटे तक उन्होंने कहा किसी पाकिस्तानी की कोई एंट्री इराक नहीं देगा, क्योंकि राणा इलियास का केस हो गया और महबूब एजेंट ने करवा दिया, जो कि हमारे साथ भी जो कुंभ में जिससे बातचीत चल रही थी मैडम की कि ये हमें क्रॉस करवा दे। सारा कुछ होता रहा, सारा कुछ होता रहा, लेकिन कोई भी एंट्री कहीं से कुछ नहीं आई। उसके बाद जो है इनसे जो कुछ भी हुआ, काफ़ी लोग गर्म थे। जाहिर सी बात है कि मैं आपको हकीकत बताऊं कि जो कुछ खबरें पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी शहर में रहते हैं, आप यकीन करें कि मैं अपने मौला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, 10% भी नहीं पता उनको जो कुछ हो रहा था वहाँ पर।
तकलीफ
टेलर भी नहीं पता, फिल्म तो छोड़े आप,
टेलर
भी नहीं पता जो कुछ वहाँ पर बॉर्डर पर हमारे साथ हो रहा था, उसका टेलर भी नहीं पता पाकिस्तान में रहने वालों को, इतना कुछ वहाँ पे हुआ। उसके बाद जो है वो तकरीबन 8 या 9 घंटों के बाद,
ये आप सेकंड डे की बात,
सेकंड डे की बात कर रहा हूँ, खबर पहुँच गई इराक में, खबर चली गई करबला तक, खबर चली गई कि 600 लोग बॉर्डर के ऊपर पड़ा हुआ है जाहिर पाकिस्तान का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करीम इब्ने करीम, जो भी सिलसिला उन्होंने किया, बहरहाल हमारे पास खाना आना शुरू हो गया।
किसने भेजा खाना?
इराक वालों ने भेजा।
अच्छा,
ईरानी हमें एक घूट पानी नहीं देते थे, एक कतरा पानी नहीं देते थे, यानी हमें उस तरफ जाने नहीं देते थे वो। तो हम वो क्या, ना वो हमारे लिए कुछ करते थे ना हम कुछ कर पाते थे। इराक ने बहरहाल हमारे लिए खाना और सब कुछ हमारे लिए वो अरेंज करते थे, नाश्ता देते थे, खाना देते थे, रात का खाना देते थे, मिनरल वाटर्स देते थे हमें।
अच्छा, मुझे बताएं कि ये खबर अभी ईरान में नहीं पहुंची थी कि 6-7 आदमी काफिला ईरान बॉर्डर?
ईरान ने तो एग्जिट किया, ईरान को कैसे नहीं पता था? ईरान ने तो हमें एग्जिट किया,
इमिग्रेशन
को तो पता था, ईरान ने तो एग्जिट करके हमें बाहर भेजा था।
ठीक है,
खैर वो बहरहाल बातचीत चलती रही, सारा कुछ होता रहा। डे एंड ये हुआ कि इनका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ और इनकी लेडीज से मुँह मारी हो गई और इनको चोट वोट लग गई, कुछ भी था वो बहरहाल होना था। इनसे हमने सिर्फ ये कहा कि देखें अगर
बता रहे थे क्या हुई थी
वो लेडीज़ की जो होती है, अच्छा। वो जाहिर सी बात है कि देखें यहाँ बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस बंदे को ये पता हो कि वो करबला के बॉर्डर पे बैठा हुआ है लेकिन कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सकता, उसके क्या फीलिंग्स होंगी, क्या जज्बात होंगे, वो आप उससे बेहतर जानते हैं।
बिल्कुल सही है, सही कह।
वो सारा कुछ वहाँ पे बोल रहा था। जिस वक्त इनको पता चला कि सारा कुछ नहीं हो सकता, और हमने इनसे ये कहा कि देखें अब इराक़ हम उसी सूरत में जा सकते हैं जब हम इनको कुछ पे करें, क्योंकि हमारे सारे अप्रूवल्स, FIA की टीम भेजी उन्होंने, इराक़ वालों ने FIA की टीम भेजी बॉर्डर के ऊपर कि जाएं आप जाके इनका मसला हल करें, जो भी ये देखें। FIA की टीम आई, उसने सारा कुछ किया, इनसे अप्रूवल लेके गया, सब कुछ लेके गया। उन्होंने बताया भाई अप्रूवल जाली है, इसकी कोई एंट्री नहीं है कहीं, कोई बगदाद में कहीं पे भी इसकी अप्रूवल्स की 39 पेजेस की कोई भी एंट्री नहीं है।
जो 39 पेजेस आपने वहाँ से निकलवाए थे व्हाट्सएप
सारे, जो मैंने व्हाट्सएप पे पूरा प्रिंट आउट पूरा बंच निकाला था,
इस नाम का डेटा नहीं है,
कोई डेटा ही नहीं है।
अच्छा ओन सॉरी, वो 39 पेजेस इसकी बात करें वो आपके पास मौजूद है?
जी
ठीक
ठीक है, वो सारा कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये आपकी कोई भी अगर एक भी चीज़ आपकी ओरिजिनल होगी, उस FIA वाले ने कहा कि आप यकीन करें आप ज़ाहिर इमाम हैं, आप करबला जा रहे हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आशूर करने जा रहे हैं, आपका कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर ओरिजिनल होगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को सबको कोई भी कोशिश करके मैं आपको सबको
अप्रूवल पे $10
चार्ज करूँगा, जो भी आपके चार्जेस होंगे वो मैं करके, लेकिन बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह निकालूँ,
सिर्फ $10 में मैं आपको क्रॉस करा दूंगा,
क्रॉस करा दूंगा।
ये पक्की बात
है, अगर $10 है,
अगर अप्रूवल,
अगर आपके पास अप्रूवल है
ओरिजिनल,
तो $10 लेके मैं आपको क्रॉस करा,
क्रॉस करा,
यही बात,
यही बात।
अच्छा
उसके बाद उसने कहा कि जनाब ये सारा कुछ हुआ, और उन्होंने जो है कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनका ओरिजिनल नहीं है, इवन के जो मैनिफेस्ट आई वो भी व्हाट्सएप पे आती थी, उसके लिए भी कोशिश करी हमने कि किसी तरह इसके प्रिंट आउट आ जाए, सारा कुछ आ जाए, कुछ भी नहीं हो सका वहाँ पे। वो जो मैनिफेस्ट आई थी उसके अंदर से कोई भी बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं था।
ठीक है,
इन्होंने मैनिफेस्ट भी वो भिजवाई जो सारे के सारे पाकिस्तान में रुके हुए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर बहरहाल क्लोज कर रहा हूँ कि मकसद वो सारा कुछ हो गया और इनको पता चला कि अब तो कुछ भी हो नहीं सकता है। इनसे हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि अगर हम इराक़ जा सकते हैं, ज़्यारत कर सकते हैं, आशूरा कर सकते हैं, वो सिर्फ पैसे पे कर सकते हैं कि जो ये पैसे मांग रहे हैं उससे ज़्यादा की आप
$10
या $8,500 की, अगर $8,500 की भी आवाज़ आई थी कि पाकिस्तानी $8,500 एक
बंदे का। बात ये कि आप भी कह रहे हैं $10
अप्रूवल
मौजूद है, अगर
अगर
की बात कर रहा हूँ, पहली आवाज $8,500 की आई थी, बाद में आपको
बिल्कुल
बाद में $10 की आई थी,
लास्ट की आवाज़
थी। हमने इनसे ये कहा कि आप सिर्फ एक काम कर लें कि आपका जो भी पाकिस्तान के अंदर ओन जाफरी है या अली जाफर है, जो भी, आप सिर्फ एक काम करें कि आप सुबह होने से पहले उनसे पैसे मंगा लें। ये सब कुछ रात में हो रहा है, सेकेंड डे की नाइट। हमने इनसे कहा कि देखिए बहुत बुरी हालत हो गई है सारे ज़ाहिर की, सब भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, यहाँ पे खाना चले आ रहा है लेकिन किसी से खाया नहीं जा रहा, इसलिए कि सामने बॉर्डर इंसान देख रहा है, उसकी बस तमन्ना ये है कि किसी तरह निकले यहाँ।
सही बात।
हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप सिर्फ एक काम करें कि आप पैसे मंगा लें, जो कुछ भी होगा अब यहाँ पर सिर्फ पैसे पर जा सकते हैं, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है जाने का। हमने इनसे कहा कि आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं? पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि मेरे अकाउंट में ₹3,00,000 पड़े हैं। फिर कुछ अरसे आधे घंटे के बाद इन्होंने बताया कि नहीं, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ ₹1,00,000 पड़ा हुआ है, ₹2,00,000
निकल गए।
हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसा करें कि मैक्सिमम की आप आवाज़ लगा दें कि मैक्सिमम आप अरेंज कर लें, अपना शेयर डालें, मैक्सिमम शेयर आप अपना डालें, जो कम होगा हमारे पास ज़ायरों के पास जितने भी नज़र न्याज के मजलिस मातम के तबर्रुक के जो पैसे हैं वो हम सब जमा कर लेंगे। जैसे अभी हमने आपको कुंभ में जमा करके दिए, ऐसे ही हम आपको फिर दोबारा जमा करके दे देंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे इसके अंदर मैक्सिमम हिस्सा शेयर आपका हो, क्योंकि आप सारा कुछ कर रहे हैं, आप ला रहे हैं, आप सालार हैं, आपका हिस्सा होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप पैसे मंगा लें, जो भी इसमें पैसे कम होंगे हम शेयर कर लेंगे, और इस तरह सारे काफ़िले वाले कब्र इमाम की ज़ियारत कर लेंगे। खैर वो होता रहा, क्योंकि ना ओन जाफरी से बात हुई, ओन जाफरी ने कहा कि जनाब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, स्पीकर पे बात हो रही थी। हमने इनसे कहा स्पीकर खोलें आप, इन्होंने स्पीकर पे ओन जाफरी से बात करी, ओन जाफरी ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद खाली बैठा हूँ, मेरे पास कोई पाई पैसा नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर ज़ाहिर का क्या रिएक्शन
होगा।
वहाँ पर बहरहाल इनकी लेडीज़ से कोई मुँह मारी हुई, हाथापाई हुई, चोट लग गई है, जो भी है, बहरहाल इनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया कि इन्होंने जो है वो एम्बुलेंस में बैठी और हॉस्पिटल चली गई और वहाँ से ये मूव कर गई। ठीक, उसके बाद
ये कौन सा तीसरा दिन आई,
ये दूसरे दिन की रात में हो गया, अब तीसरा दिन आ गया,
अब तीसरा दिन आ गया।
नौ मुहर्रम आ गई,
आठ मुहर्रम की रात,
आठ मुहर्रम की रात में ये हो गया, नौ मुहर्रम आ गई, नौ मुहर्रम की सुबह उन्होंने हमको वापस भेजा के चले आप ईरान में जाएं, अब आपका कोई कुछ नहीं हो सकता, आप निकले यहाँ से।
अच्छा,
उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, ईरानी फौज आ गई, ईरानी फौज ने हमको वहाँ से
वापस
किया, बकायदा धक्के वक्के दे के हमें निकाल के और ईरान से एग्जिट मार के हमें मेहरान बॉर्डर पे फेंक दिया।
एक सवाल मेरा, आप कह रहे हैं इराकी फौज ने आपको धकेला,
ईरानी
हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हम आप लोग नहीं जा सकते, उन्होंने गेट बंद कर दिया, बॉर्डर का गेट बंद कर दिया, उन्होंने कहा आप जाइए, बिल्कुल खत्म, अब
आपका
इतने में ईरानी आया क्योंकि डबल एंट्री थी हमारी, ईरानी आया, ईरानियों ने हमें धकेला और धकेल के सबको बकायदा धक्के दे, लोग रोए पीटे चीखे चिल्लाए वहाँ पे, गिरिया किया वहाँ पे लोगों ने, मिन्नतें करी के
किस बात की मिन्नतें की
कि किसी तरह हमें जाने दो, हम जाहिर है इमाम है,
मकसद ये कि इराक ने बॉर्डर बंद कर दिया,
बंद कर दिया उन्होंने, ईरानियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ हमारे लिए कर दें, लेकिन भारत किसी ने कुछ नहीं,
मुमकिन नादान थे,
नादान थे, अब वो आए उन्होंने बहरहाल हमें दोबारा एंट्री मारी, दोबारा की उन्होंने एंट्री मारी, एंट्री मार के पूरा काफिला हमें इराक वहाँ पे फेंक दिया, वहाँ से सब लोग अपने अपने ग्रुप में बट गए, जाहिर सी बात है कि लाहौर वालों ने अपना ग्रुप बनाया, लड़काना वालों ने अपना ग्रुप बनाया, सारा कुछ बनाया, हमने वहाँ से जो है वो तकरीबन हमारे साथ 280 लोग थे, हम सबसे आखिर में निकले, हमने उनसे कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है या जो बेचारा नहीं शेयर कर सकता वो भी हमारे साथ आ जाए।
अच्छा, इस वक्त आपके पास कार्बन ऑफ फैट का कोई भी आदमी
नहीं, कोई
नहीं, अब जो कुछ अरेंज
हो रहा है खुद कर रहा है, सब खुद कर रहा
है, ठीक है,
285 लोगों को लेके हमने तीन बसें अरेंज।
अच्छा, शाह भाई आपके साथ होंगे इस वक्त वहाँ पे?
नहीं, वो भी अपना, वो तो अपना उनका अपना सेटअप था,
मतलब
वहाँ से
चले गए,
चले गए वो वहाँ पे।
लास्ट बात का काटूंगा, आपकी लास्ट बसेस वो अरेंज की कि जिनको कोई ले जाना नहीं,
ले जाने वाला नहीं,
लेडीज थी, तो हमने कहा कि ये बॉर्डर पे रह गए तो ये वाली सरपरस्त कोई नहीं है, तो इनका क्या होगा, तो हमने सारी बसेस जाने दी, उसके बाद जो लोग बचे तो हमें पता चला कि भाई अब दो बसों से तीन बसों के लोग हो गए, और उन्होंने चार्ज किया डॉलर्स में, $10 फी पैसेंजर उन्होंने चार्ज किया बस का।
अच्छा,
फिर हम तीन बसेज लेके कोम आए, कोम आए तो एक रफीक थे वहाँ पे हमारे दोस्त, तो उनसे बस में रबता किया, उनके भाई के थ्रू हमारे साथ जा रहे थे, ने कहा कि भाई आप कुछ देखें कोई ऐसा मुसाफिर खाना।
अच्छा, देखिए असल में वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए मैं आपसे जो है ना वो तेज़ी से सवालत करना चाहता हूँ, बात ये सारी समझ में आ गई, बॉर्डर पर क्या हुआ, किस तरीके से आप ईरान में अंदर वापस आ गए, अब वापस आप कोम आ गए, ऐसा ही हुआ ना कि आप वापस कोम आ गए, अब ये बता दें, थोड़ा सा मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे आप कुम वापस आने के बाद किसके रहमो करम पे थे,
आपस में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे,
मतलब ईरानी गवर्नमेंट आपके साथ कोई तावन
नहीं, 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 देखें हरम दफ्तर रहबरी की तरफ से तावन था, और
इसका मतलब मैं बताऊँगा जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, दफ्तर रहबरी ने आपको टेक ओवर किया, आपको जगह भी दी, आपको खाना पीना दिया, ऐसा था?
अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जो तीन बसेस मेरे साथ थी जिसको मैं लीड कर रहा था, हमने उनसे ये सिर्फ ये हेल्प लिए कि एज ए आप फारसी बोल के हमारा होटल करवा दीजिए, हमने उनसे एक रुपया ऑन बोर्ड है कि हमने उनसे नहीं लिया,
सारी चीज़ों का पे किया,
तीन बसेस का हमने कोई पैसा नहीं लिया, उन्होंने हमें बस आखिरी सहूलत ये दी कि जो हम कौम से वापस तेहरान एयरपोर्ट गए वो उन्होंने एज ए के मतलब आपकी बसेस मैं उसकी भी बात की कि मैं आपको पे करता हूँ,
मस्जिद वगैरह की ज़रूरतों क्या था
वो हमने अपना ओन किया, जितने लोगों ने जितनी जितनी बसें ओन की अपनी जान पहचान की उन्होंने खुद किया, उनको दफ्तर रहबरी से मिला, उन्होंने हरम दफ्तर बैनो ज़ायरीन से पैसे लिए,
किसने?
उन लोगों ने, उन लीडर्स ने जो उस वक्त हेड बने थे, उसमें चंद काफी नाम
है, पीछे भी काम कर रहे हैं, पैसे दे रहा है
जी,
ग्रुप अलग था,
लेकिन मैं ये आपको वजाहत कर दूं कि
नहीं, अच्छा तो वो ग्रुप अलग क्यों था, मैं ये पूछना चाह रहा
हूं, 650 लोगों का तो कोई होटल है नहीं ईरान में,
है ही नहीं,
और मुहर्रम के ये दिन
देखिए एक बात ये है कि मैं एक ग्रुप था 600 लोग हैं ना, उसमें से 100 लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है यार हम अपना खुद कर लेंगे, अब वो जैसे आप कर रहे करते रहे, लेकिन बात ये कि बाकी लोग जो थे उनको कौन लुक आफ्टर कर रहा था, उनको दफ्तर रहबरी लुक आफ्टर कर रहा था,
दफ्तर रहबरी ने भी उसके सपोर्ट करी है,
उन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे थे, कुछ आलिम दीन आए थे, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने पूछा आपकी क्या मशाकिल है, हमने कहा भाई ये मामलात हैं, आप हमारा मेरे जो उनसे मुतालबा था वो ये था कि हमारा वीज़ा एक्सपायरी का बहुत बड़ा इशू था कि हम गैर कानूनी हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे,
वो उन्होंने हल कर दिया,
वो हमने उनसे हल करवाया, लेकिन आखिर में वो पाकिस्तान
आपके साथ जो बसें थी उसमें कितने लोग थे?
हम लोग तकरीबन टू
मेरे साथ में 135 अफराद थे, तीन बसेस,
135 अफराद तीन बसों के। इसका मतलब है कि 600 में से 135 निकाल दे, बाकी लोगों को आप ये कह रहे हैं कि मकामी दफ्तर रहबरी जो है वो उनको लुक आफ्टर कर रहा था,
बिल्कुल
खाना पीना उनको दे रहा था और रहना सहना उनका सब उन्होंने मैनेज किया था। इसका मतलब ये कि ईरान आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा था, ज़ायरीन को
ईरान ने सपोर्ट
किया,
बिल्कुल ईरान
ने सपोर्ट। अच्छा, मैं यही समझ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ये आया था कि ईरान ने धक्के दे के और
बॉर्डर के पास, जिस वक्त हमारी
बात सही सी है वो, चूंकि वो इंप्रेशन आपके कहने से आया ना तो मैंने इसलिए आपसे सवाल,
जिस वक्त बॉर्डर पे हम इनलीगल हो गए और लोग वहां से नहीं निकल रहे थे, लोग
वो भी देखे, कहने का मकसद ये है कि
कानूनी मजबूरी थी,
कानूनी मजबूरी थी, उन्होंने वापस लाना था,
वापस लाना था। लेकिन भारत, अच्छा अब देखिए हम बहुत चुके, बहुत वो राय, कोशिश करेंगे उसको मजीद किसी तरह से मजीद बातें करेंगे।
यहाँ पे मेरा एक सवाल,
एक जमीर भाई मेरा एक छोटा सा एक सवाल है, ऑन भाई यहाँ पे बैठे हैं, समीना आंटी बैठी हैं, जितना ताबून कर सकते थे इनके साथ किया ही, गवाह हैं, बॉर्डर तक मैं ही जाता था इनके साथ, ये भाई जो फाइल लेके बैठे हैं इसमें इन्होंने कहा कि भाई जाफर नकवी को हमने इतनी पेमेंट की है, बुखारी ट्रेवल्स इतनी पेमेंट की है, ये चेक मौजूद हैं और ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी चीज़ें लेके बैठे हैं, सिग्नेचर किसका होता था, मालिक कौन था। बात ये कि आप उन लोगों को ऑन बोर्ड लें, क्या उनको पैसे पहुँचे? सपोज मैं आपको चेक देता हूँ,
देखिए मैं आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
मैं आपको चेक देता हूँ, आप मुझे रिसीविंग दे देंगे,
ठीक है। मैं ये तो हम इसलिए लेके नहीं बैठे हैं,
नहीं
ये इसलिए जिस मकसद से भी लेके बैठे हैं, हमने इनसे डिमांड किया कि हमें चाहिए, हमें दिखाएं अब जो आपने पेमेंट्स की,
ठीक है,
इसलिए लेके बैठे हैं। क्यों? बेसिकली हमें फिगर आउट ये करना है कि ये डायरेक्ट जेब में रखे हुए हैं या इसकी पेमेंट हुई है,
ठीक है।
अब ये हमें जो चीज़ देंगे, अब हमारी कोशिश ये होगी हम वेरीफाई करें कि ये है भी कि नहीं है, अगर वो साबित हो जाता ये है तब भी ये बड़ी जिम्मा नहीं है, इसका सोल्यूशन कुछ होना चाहिए,
बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा भी है,
ठीक है ना, आप जी मुझसे पूछने जा रहे
हैं, जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि मकसद आपका ज़र्फ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मिस मैनेजमेंट हो गई, ठीक है,
हमें नहीं लगता,
हमें नहीं लगता, इस वजह से नहीं लगता,
हमें फ्रॉड
मेरे जुमले को सही करें, पहले मैंने आपसे ये कहा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है,
ठीक है,
लेकिन मुझे इसमें कहीं बदनीयति नजर आती
है, बदनीयति मैं आपको बताता हूँ,
और मैं ये कहता हूँ, मैं मुझे अभी देखिए साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि अली जाफर ने गड़बड़ की है, अली जाफर ने गड़बड़ की
है, मैं आपको बताता हूँ,
वो हमें क्योंकि
मैं बहुत तेजी से बताता हूँ,
मुझे वाइंड अप की तरफ जाना,
बात ये है कि ऑफिस में सारे लोग थे, सारे लोग मौजूद थे, सब वर्किंग कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, ठीक है। अगर लफ्ज़ शिया की बात करते हैं या आज़ादार की बात करते हैं, अगर आप भी आज़ादार से मुखलिस हैं, मैं भी आज़ादार से मुखलिस हूँ, हम दोनों का मकसद देखे, हमारा रिश्ता एक है जो बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह सलाम अलैहा ने बनाया, उससे बड़ा रिश्ता नहीं है हमारा,
बेशक
एक ही रिश्ता है हमारा और वही सच्चा रिश्ता है, और ताक अहमद वही सच्चा रिश्ता है हमारे लिए। अगर आप उस रिश्ते से मुखलिस थे, सारा कुछ था, और आप ये देख रहे थे कि ये सारा कुछ हो रहा है आपकी नज़रों के सामने, हैं आपके क्या, आप 10 काफ़िले ले जा चुकी थी, आप ये 10वां काफ़िला लेके गई बगैर पैसे के, आप अनमिच्योर नहीं थी, आप मिच्योर थी, आप 10 काफ़िले लेके जा चुकी,
शिकायत की है ना,
सुन ले
परफॉर्मेंस सारे गलत,
आप ये सारे लोग काम कर रहे थे, अगर ये इतने मुखलिस थे इस लफ्ज शिया से जो बीबी ने दिया, ये क्यों नहीं खड़े हुए वहां पे, क्यों नहीं उन्होंने लोगों
को, एक सवाल आपसे करूँ, आप शिया हैं, शिया ऐसा होता है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि 60,000 में नहीं जाना, अब जाऊंगा
मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि इनमें से कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसलिए कि इनको पता था कि बॉटम लाइन इसकी क्या है, बॉटम लाइन पे जो कुछ इनको मिलने वाला था ये उस पर चुप थे, ठीक है। अगर ये इतने ही सिंसियर थे, एक्सक्यूज मी, अगर ये इतने ही सिंसियर थे और इतने ही सच्चे थे, ये वहां खड़े होते, स्टैंड लेते,
चले
स्टैंड लेते वहां पे,
बिल्कुल ठीक है। मैं तो उनसे इंकार,
एक मिसाल
देखिए, मैंने
तस्वीर
देखिए, आपने पूरे प्रोग्राम में देखा, मैंने इनसे कहा कि मिसमैनेजमेंट है, आपने गड़बड़, और आप बैठे हुए थे ऊपर,
सब हिस्सा है इसके।
चले आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो पार्टनर्स हैं उसमें,
बनना है। अब ये एक टीम, मकसद एक मजलूम बना दिया गया, ठीक है, अब ये सब मजलूम बन के बैठ गए हैं, सही है,
चले हम
सब सिस्टम का हिस्सा, एक फेस कर रहा है,
ठीक है,
ठीक है। इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जो बेचारा तीसरी चेयर पे भी थोड़ी देर पहले बैठा था, वो फेस कर रहा है, वो सबको फेस कर रहा है,
और वो भी हिस्सा है इसका,
वो भी इनका हिस्सा है,
उसको भी पैसे मिल रहे हैं,
अब बॉटम लाइन
उसको मेरे ख्याल से सैलरी भी नहीं मिली,
उस बेचारे को सैलरी भी नहीं मिली,
ठीक है, मजलूम आदमी ऐसे ही बनता है,
तो हो सकता है बॉटम लाइन में उसे भी कुछ मिलना हो।
चलें हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये जितने अपने एतराजात किए ये मैं इन पर कर चुका हूँ, आपके सामने कर चुका हूँ एतराजात, क्या वीजा नहीं था तो नहीं जाना चाहिए था, मिसमैनेजमेंट है, मुझे इसमें बदनीयती नजर आती है, एक ऐसा आदमी जो के पीछे पैसे जमा कर रहा है, एक अकाउंट्स जिसके पास है वो गायब है, अब वो ये कह रहा है कि जनाब मैं जो हूँ वो आपको बस आप पहुँचे हैं आपको दे रहा हूँ कुछ, जो इनका जो बचपना है वो ये है। दूसरी अहम
तरीन नहीं है सर, आप प्लीज
सर आप देखें ना, हर आदमी का देखने का एंगल होता है, आपका ये एंगल है, मेरा ये एंगल नहीं है। आप जो जाहिर सी बात है आपने जो देखा है, आप जो आप तो विक्टिम है, आपने बड़े करीब से देखा होगा।
तो अब देखिए माजरत आपकी बात कट ऑफ की, लास्ट आवाज ये लगी कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमने जाफर नकवी को पूरे पैसे दे दिए, ऑन अराइवल हो गया हमारे पैसे जाया होंगे,
ये सिर्फ ऑन अराइवल के चांस पे गए थे,
ऑन अराइवल का चांस था कि हमारे पास क्या है, रोकते रहे कि हम वीजा नहीं दें,
सब पैसे बचाते रहे, ये इन्होंने कहा ऑन अराइवल खुलेगा, लोग चले जाएंगे करबला, बल्ले बल्ले हो जाएगी, हम हीरो बन जाएंगे,
सही, 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 सही,
सिर्फ चांस पे गए थे ये,
क्या
ऑन अराइवल खुलेगा
जाफर
हम हीरो हो जाएंगे।
एक सवाल ये है, उन्होंने जाफर नकवी को पैसे अप्रूवल के दिए हैं और जाफर नकवी साहब के पास साबित हो रहा है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, जाफर नकवी साहब अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं
बिल्कुल उससे सवाल होने
चाहिए, पैसे दिए हैं
बिल्कुल उससे सवाल होने
चाहिए, मींस के इन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है इससे साबित हो रहा है ना, हम जाफर नकवी को ऑन बोर्ड लेंगे और पता करेंगे क्या, लेकिन हम फौरी तौर पर सोल्यूशन, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेंदी हो रहा है, हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आप जा रहे थे ज्यारत के लिए, आपके लिए इससे बड़ी कोई चीज किसी भी ज्यारत के लिए नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं कि इमाम के हरम में पहुंच जाओ, उस गुंबद के नीचे खड़े होकर मौला को पूछ सकते थे और दुआ मांग सके, इतनी सी बात है, हमने सोल्यूशन की तरफ जाना, जो आप प्रोग्राम जो बात आप कह रहे हैं कि गलत है वो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, और हम ये कह भी रहे हैं आज थोड़ा सा फर्क के साथ हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मिसमैनेजमेंट के साथ बदनीयती शामिल है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बदनीयती है और ये लोग उस बदनीयती का पार्टनर है,
बिल्कुल पार्टनर
है। ऑन जाफरी, समीना गौर साहिबा, अली असगर और जमीर साहब हमारे पास उस वक्त मौजूद हैं, जमीर साहब जो है विक्टिम है, आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने एक नई शक खोल दी, एक नई बाब खोल दिया, नया बाब खोल दिया, मैं तो ये कह रहा था कि मिसमैनेजमेंट है, साथ में जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बदनीयती शामिल है, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि नहीं जी सर बदनीयती सबकी ही शामिल है, सब इसका पार्ट है, बहरहाल हम मौकफ लेंगे समीना गौर साहिबा का और इंशाल्लाह उन जाफरी का, लेकिन मैं सोल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या 60,000 रुपये जो ज़ायरीन ने दिए थे वो सब ज़ाया हो गए, या सर कोई सोल्यूशन भी है कि हाँ जी वो पैसे कुछ पैसे उन्हें वापस मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते तो क्या इनके पास कोई दूसरा सलूशन है, इस सिलसिले में हम ज़रूर बात करेंगे। पहले हम चलते हैं अली असगर के पास और अली असगर से ये पूछते हैं कि क्या कोई सलूशन है अली असगर इसका मौजूद, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को वहाँ देख रहे थे और आपका ट्रैवल एजेंसी से ताल्लुक़ रहा है, जो टिकट्स वहाँ इशू हुए थे जो कि इस्तेमाल नहीं हुए, कोई इसका सलूशन मौजूद है?
बिल्कुल भाई, इसका सलूशन मौजूद है।
क्या
बात ये देखें, मैं तो ज़ायरीन के साथ तब से इन्वॉल्व हूँ जब से वो बॉर्डर पर फंसे थे।
अच्छा।
और जो ज़ायरीन मेरे साथ उस वक्त यहाँ मौजूद थे जो नहीं जा सके थे, वो इस बातें गवाह हैं कि रात भर हम कहाँ कहाँ फिरे और किन किन लोगों से
आप इन्वॉल्व हो रहे थे, वो तो वहाँ थे बॉर्डर पे, आप यहाँ पाकिस्तान में इन्वॉल्व थे?
बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मैं इस हवाले से मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैदान पे क्या हालात होते हैं, और क्योंकि पिछले साल का इवेंट मुझे पता था इसमें बच्चे मर गए थे
जी,
तो मेरे जहन में वो एक चीज़ थी कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता फिर से कोई एक, तो हमने रात को जो एक्टिविटी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ हमारे साथ जो नहीं जा सके थे और यहाँ मौजूद थे, जिनके टिकट नहीं होते, किसी का वीज़ा, किसी का पासपोर्ट नहीं था, टिकट उनके पास था, पासपोर्ट उनके पास नहीं था, तो वो इस बात पर गवाह हैं कि रात को क्या क्या वर्किंग थी जब लोग वहाँ फंस चुके थे और हम किस किस के पास नहीं गए, और एक उस तब से हमारा एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है ज़ायरीन के लिए। एक ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप के ऊपर जिसमें तमाम ज़ायरीन ऑन बोर्ड थे, और वो तमाम ज़ायरीन 1200 नहीं, लेकिन उसमें से हम जो कुछ कहते थे वो 1200 तक पहुंच जाता था।
अच्छा।
किसी के थ्रू, लेकिन ये होता था कि उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, 100 उसमें 96 के करीब हमारे पास लोग थे, और उन तमाम लोगों का जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब ये मामला हुआ तो खुद ब खुद लोगों का रुख मेरी तरफ हो गया, और मुझे ये फील हुआ कि मुझे यहाँ से लीड करना चाहिए, और मैंने उसको काफ़ी हद तक जिम्मेदारी जहाँ तक हो सकती थी, मौलाना ने मुझे हिम्मत ताकत दी, मैंने उसको फेस किया, लोगों को फ़ोन कॉल्स भी उठाई सबकी और सबको फेस भी किया ज़ायरीन को, वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था हमारा, और मुस्तकिल हम सोल्यूशन की तरफ ही जा रहे थे कि सोल्यूशन निकला, हमने पूछ बड़ों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की इस मामले में, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका मामला। अब जब ये वीज़ा एक्सटेंशन के मामले हुए और वो तमाम मामला जो हरम में फॉरन अफेयर के ऑफिस तक पहुँचना, वो सारे मामला इसके अंदर आ जाते हैं कि वो हमारी एक मुस्तकिल स्ट्रगल रही है ज़ायरीन के आ जाने के बाद। एक खातून थी, उनकी तबीयत वहाँ पर इतनी ख़राब हो गई, उनको खून की उल्टी आने लगी
वहाँ ईरान में
गया। और फिर उनकी फैमिली से यहाँ पे ऑन बोर्ड उनको उनसे रब्ता
करना, उनकी खराब हुई
नहीं, उनकी खून आने के बाद मशहद में खराब, उन कि हॉस्पिटल लेकर गई, अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या क्या नहीं पता, लेकिन हम तक ये आवाज़ पहुंची कि उनको जवाब दे दिया। तो एक नई मुसीबत थी हमारे लिए कि हम उसको भी देखें कि भाई ये क्यों हुआ। वो खातून कराची आई, उनसे फिर मेरा रब्ता भी हुआ, और वो तमाम उसी वक्त उनकी फैमिली से हमने
उस मामले के अंदर कार्बन ऑफ फ्राइड का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं था,
नहीं नहीं, सब हम खुद ही कर रहे थे, खुद ही देख रहे थे।
वहाँ से होता ये था कि ग्रुप के अंदर किसी लड़के ने कहा कि अजहर भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास,
सॉरी एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो। इस मामले के अंदर जो आप बता रहे हैं, ईरान की ऑफिशल्स कोई किसी तरह से इन्वॉल्व थे या सिर्फ ज़ाहिरी ने खुद किया था?
ये ज़ाहिरी ने खुद किया था, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारे भी हाथ कटे हुए थे पाकिस्तान में, हम क्या कर सकते थे। हमने सिर्फ ये, हमारी एक कामयाबी ये थी कि हमने ज़ाहिरीन को एक जगह पे जमा किया हुआ था उस ग्रुप के थ्रू, कि जब हमसे कोई मैसेज करता था कि अजहर भाई,
बात तो जवीद भाई बता रहे ना कि वहाँ पे ईरानियन ऑफिशल ने उनको,
हाँ, जो उन्होंने की मदद वो, लेकिन
वो जो खातून थी आपके उसमें नहीं थी,
नहीं उसी में थी, लेकिन ये कि वो जाहिर सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली इतनी तेजी से उनकी तबीयत खराब हुई, सारा कुछ हुआ, तो उनको फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।
भाई खैर से वो
अल्लाह का शुक्र
है। अच्छा, उस ग्रुप से फायदा ये हो रहा था कि इंटैक्ट थे सब लोग, जब ये वापस फॉर्म आए ना तो सब स्कैटर्ड थे, कोई 100 लोग यहाँ पे रुके हुए, कोई 10 लोग यहाँ रुके हुए, 20 लोग वहाँ रुके हुए, तो हम उनको एक जगह, और जो फॉरेन ऑफिस ने भी हमसे यही कहा कि सारे लोग अलग अलग जगह पर,
सोल्यूशन की तरफ आए ना, इसका सोल्यूशन
हमने इस वक्त जो सोल्यूशन है,
मैंने आपसे सवाल किया था वो टिकट्स जो यूज नहीं हुए उसका कुछ इस्तेमाल हो
सर, हमने ये भी बता
रहे 600 लोग गए ना इधर से, बाकी तो गए नहीं लोग।
इसी दौरान हमें ये पता चला कि प्राइड ने बुखारी को पेमेंट कर दी, की हुई थी, और कुछ टिकट अभी ऐसे हैं जो यूटिलाइज हो सकते
हैं। बुखारी इसको एडमिट करता है या उसने पेमेंट की थी?
सर मैंने जब ये मुझे रात को पता चला, उस वक्त हम जगह पे बैठे, सब लोगों को बुलाया उसी वक्त, रात के तकरीबन कोई 10:30 बज रहे थे, हमने उस वक्त सब तमाम लोगों को उसी वक्त ऑनबोर्ड लिया, और उस हमने बुखारी के उस बंदे को जो वहाँ का मैनेजर था, जो कंसर्न आदमी था, उसको हमने फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं बहुत करीब ही हूँ आप लोगों के।
अच्छा,
हम तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट में उसके पास पहुंच गए।
ठीक है,
और उस वक्त रात को हम वहाँ बैठे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था वहाँ पे कोने में बना, रात को तकरीबन हम कोई 2:30 से 3 बजे तक उसके साथ रहे, और ये सोल्यूशन निकला कि आपका जो टिकट है वो हम आपको 16,500 में इशू करके दे देंगे।
16,500 में टिकट इशू करके दे देंगे,
इशू करके दे देंगे।
कितने का था टोटल टिकट?
टिकट कुछ मुख्तलिफ रेट से, कुछ लोग
ऐसा अमाउंट क्या होता है ईरान का वीजा का?
ईरान का जो फेयर मुझे पता है वो था 40,000 रुपए का।
40,000 वो कह रहा था कि आपको 16,000 रुपए
रीइशू हो जाएगा, टिकट
रीइशू हो जाएगा।
तो हम
कितने टिकट इशू हो जाएंगे?
तकरीबन 215 टिकट्स की उसने बात की थी। अच्छा, 215 प्लस 92 टिकट। 92 टिकट जो थे वो नो शो टिकट थे। नो शो में होता है कि उसकी कैंसिलेशन, उसकी पेनल्टीज अलग होती हैं,
वो ज्यादा होती है,
वो ज्यादा होती है। अब वो हमें, उसने कहा कि वो है 30,000 रुपए की। हमने उसी वक्त डिसीजन लिया कि हम 92 को नहीं देखेंगे, फिलहाल हम 215 को देखते हैं।
ठीक है,
215 की जो कैंसिलेशन, जो पेनल्टी उसने हमें कही, वो हमें, हमसे कहा कि 16,500 की टिकट्स है, ये इशू कर, ये
मतलब ये 215 कोई भी हो सकते हैं?
नहीं,
यस सर, वही 600 थे जहाँ बचे हैं।
असल में इसके पीछे एक पूरा, इसके पीछे एक पूरा एक बैकग्राउंड है इसका, कि देखें जब टिकट, जब 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के जो टिकट्स कैंसिल हुए, तो ऐसी बात है वो टिकट्स इशू हो चुके थे ना, इशू होने के बाद कैंसिल हुए, जब कैंसिल हो गए तो सिस्टम में मौजूद हैं।
ठीक है,
सही है। अब जो सिस्टम में मौजूद थे उनके ऊपर पेनल्टीज लगी हैं, वो जो पेनल्टीज हैं वो पेनल्टीज पे करके वो टिकट्स को दोबारा से जिंदा
किया। वो आप बता रहे
16,500 उसने हमें कमिट किया, और उसने हमें कहा कि सही है आपको मैं 2 से 3 दिन देता हूँ, मुझे बता दें किन किन लोगों के। हमने उनसे कहा कि हमें नाम दे दें, इन्होंने कहा नहीं आप, हम आपको नाम नहीं दे सकते 215 लोगों के, हम आपको देते हैं, आप हमें लिस्ट देते और हम उस लिस्ट में से आपको बता देंगे कि हम। अब यहाँ पर मसला ये था कि हमारे पास जो मास्टर लिस्ट थी वो थी तकरीबन 1260 लोगों की, 1260 लोगों में से 650 लोग गए हैं, तो ये 100 नो शो हैं, 92 नो शो हैं, रिमेनिंग जो बनता है डिफरेंस वो ज़्यादा है और टिकट कम है।
ठीक है,
सही। अब जो टिकट हमारे पास मौजूद हैं, जो फिगर हमारे मौजूद है 215 की, यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट हुई।
किसकी वर्किंग?
हमारी, कि हमें 200
हमारी से मुराद आपका हमारी से ऑफ प्राइड है या आप ऑन बिहाफ
ऑफ जाइए? नहीं सर, मैं ऑन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी,
इंडिविजुअल कैपेसिटी
में मैं ये काम कर रहा था।
ये कारवान ऑफ प्राइड ये काम नहीं कर रहा?
नहीं, कारवान ऑफ प्राइड ये काम नहीं कर रहा, ये मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब जाहिरी के साथ खड़ा था तो मैंने जे एक खातून को फालिज का अटैक हुआ बेचारी को, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैंने फेस किया, जिनके पास मैं गया हूँ, हमें, मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ जहाँ मुझे यकीन था कि मुझे गोली मार देंगे, और जहाँ हम वहाँ गए हैं लोगों से, उनसे बात की है, उनको काफ़ी हद तक इसमें काम डाउन किया है। जब ये मामला हो गया कि जब खुद ब खुद लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया, तो मुझे इस बात का एहसास हो कहीं कि मैं कुछ करूं, उसी दौरान मैंने इस्तखारा लिया, तो वहाँ पे सूरह अनफाल की 46 आयत आ गई कि भाई आपने इस्तकामत से यहाँ पे रुके रहना और ये काम करना है इसने। मैंने वो उसको अपने कंधे पे लिया कि चलो इसको 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 कहीं स्टॉप करते हैं, इसको लेके चलते हैं। मीनवाइल ये हुआ कि हम कुछ कारवान वालों से भी रابطہ करते रहे। एक कारवान वाले ने मुझसे कहा कि असगर भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कारवान में आ जाएं, मेरा सीरियसली, क्योंकि वो एक उसने मुझसे कहा मेरे कारवान में आ जाए, मैं आपको मैंने उसको कहा भी तुम देख रहे हो मेरे हालात, ये मामला ऐसे चल रहे हैं, तुम्हें सब कुछ पता, उसके बाद भी तुम, हैरत की बात है। वो मुझे कहने लगा कि असगर भाई मसला ये है कि हमें आपका पूरा बैकग्राउंड पता है, और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे बता दो कि आपके कितने लोग थे। मैंने कहा मेरे 10 से 15 लोग थे। कहने लगा आप छोड़ दो 10 से 15 लोग, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी
सर, वो तो एक गलत मौजू है, हम तो सलूशन की तरफ जा रहे हैं।
मैं वही बता रहा हूँ, वहाँ से बात स्टार्ट हुई कि सही है 215 आपकी जिम्मेदारी, मुझे 215 की नहीं है, मेरे पास तो सारे लोग जितने जो बचे हैं सारे मेरे हैं, आप मुझे बता दें उनके लिए क्या करें।
वैसे तो पूरे के पूरे बचे हैं 1200 समथिंग,
1200
इसलिए कि जो गए हैं वो ज्यादा अजियत में,
ज्यादा अजियत,
जैसे जमीन के कहने के बकौल के आपको अभी तो 1/3 भी नहीं पता है जो हम इन पे हुई है, जो गुजरे थे, वो अलहदा मौजू है। हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि 215 और जिनको 16,500 गेव, ये आपका मतलब जायरीन का अपना एक ग्रुप है जो ये काम कर रहा है, इसका ताल्लुक कार्बन ऑफ प्राइड से नहीं है। हाँ तो अब मैं जो चले, अब
वो जो कार्बन वाले थे उन्होंने वहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बता दूँ, उन्होंने हमसे ये कहा कि असगर भाई ये 50 लोग आप हम पे जो छोड़ दो अपनी कारवान के, उनको सिर्फ टिकट और वीज़ा दे दो, उनकी रिहाइश खाना पीना ईरान का और इराक का, वो हमारी जिम्मेदारी।
सर मेरी तरफ से तो माजरत कर लीजिए उनसे, खुदा के वास्ते कोई नई चक्कर में ना पड़ना। अच्छा मैं वो तो आपकी सोच है, आप देखें बारे
में, ये 50 लोगों को पे कितना करना पड़ेगा ये भी तो पूछ।
अच्छा कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे, आपने अरबईन का काफिला भी तो बुक करने की कोशिश की थी हाल में, ऐसा है
अरबईन के भी लोग हैं जो अब तक वो बेचारे हमसे भी ज्यादा मजलूम है।
हाँ तो वो कितने ऑन जाफरी अगर मुझे बता सकें अरबईन के,
50+ थे आई गेस,
और वो कितना और कितना उनसे हमने चार्ज किया है,
वो उनकी पेमेंट सोच चुकी है 80,000 के हिसाब से।
नहीं पूरी पेमेंट नहीं हुई भाई,
किसी ने 40 किसी ने 30 ऐसे,
तो आप टोटल अमाउंट बता सकते हैं। सर मैं एक मिनट में रुकिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने क्यों 40,000 लिया जब 80,000 है पेमेंट?
नहीं लोगों
ने बात सही
के साथ दिए।
अगर मैं आपके सवाल करूँ, एक आदमी आपसे ये कह रहा है कि जनाब 30,000-60,000 के अंदर जो है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको ईरान इराक कराऊंगा, और आप वो ये कह रहे हैं कि जी 60,000 अहमियत किस चीज़ की है, वो जो बदनीयती की मैं बात कर रहा हूँ वो है उसके सामने पैसा, मेरे पास जनाब शनाख्ती कार्ड नहीं है ठीक है कल देना पैसे जमा कराओ, मेरे पास तस्वीरें नहीं है ठीक है कल आप दे दीजिएगा अभी जब पैसे जमा कराओ, मेन चीज़ है कि तुम पैसे जमा कराओ, ये है बदनीयती उस जगह पे, जो मैं आपसे बदनीयती की बात कर रहा हूँ, जिसका आपने देखा आपने भी एक्सेप्ट किया कि जनाब कम अज़ कम अली जाफर को तो हम ये कह सकते हैं जो पैसा लेके गायब है। अगर अली जाफर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी इसी तरह से पोर्ट्रे हो रही है कि वो पैसा लेके गायब हो गए हैं, और जो कि मैडम ने भी अर्ज़ किया और हॉन जाफरी ने भी बताया, और इम्प्रेशन यही है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और किसी भी तरीके से PCN से रब्ता कर सकते हैं, अगर आप फेयर हैं और आप ये समझते हैं कि आप के पास जो पैसे मौजूद हैं आप उसको वापस कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसका प्रूफ दे सकते हैं कि जिन्हें मेरे पास नहीं है, तो आप ज़रूर जो है वो PCN से रब्ता करें। अब अगर साहब मुझे ये बताइए कि आप जो चहलों के लिए 80,000 रुपये का अनाउंस किया, आपने 30,000 रुपये 60,000 रुपये क्यों लिए, या 20,000 रुपये 50,000 रुपये जो बुक कर रहा है आपको पैसा
की तरह, तो 60 की भी ऐसे ही हुई थी
तो गलत हुई थी,
20 दिए थे, कौन
सा सिस्टम दिए थे, ये कौन सा सिस्टम,
फुल पेमेंट तो नहीं लेते
थे, भी नहीं दी ना
सर, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यही तो मिसमैनेज, यही तो प्रॉब्लम है कि कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसके पास जितना पैसा 10,000 रुपए तो मैं चलो दे जाओ ठीक है बाद में करें, ये क्या चीज है, मैं तो
ये सारा भी सिस्टम कैसा है इन्हीं के सामने हो रहा है,
बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारे पास जिनका आधी पेमेंट।
अच्छा आपको जमीन की बात से कोई इख्तिलाफ है तो आप बताएं।
नहीं जैसे इन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा पूरा ग्रुप लेके आप जाएं, मैं बाद में आऊंगी, ये मैंने कब कहा,
मेहरान बॉर्डर के
मेहरान बॉर्डर पे सबसे पहले एंट्री मेरी हुई है,
एंट्री तो मैंने आपसे कहा कि आप जाइए,
बैठ के आई बकौल इनके शाहब के साथ, तो एंट्री हो गई थी मेरी,
वो तो एंट्री
जब अंदर जाऊंगी एंट्री होगी तो अंदर जाने देगा ना,
ऐसा नहीं होता, जिस वक्त आप बात करने जाते हैं वो आपके पासपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट रख लेते हैं,
पहली मरतबा गए थे ना,
हाँ पहली मरतबा गया था लेकिन आपसे ज्यादा जानता हूँ इस वक्त।
बिल्कुल जानते हैं
आप। पहली दफा में मैंने इतना कुछ ले लिया है कि आपसे ज्यादा जानता हूँ।
बिल्कुल जानते हो। हाँ बिल्कुल जानते
हैं। एक सवाल ये है ना समीर भाई, बात ये है कि वो एंट्री दे रही है वहाँ पे, जा रही आ रही तो एंट्री लग रही है।
पासपोर्ट रखते थे सर, वो दो दफा मैं भी गया,
मेरा पासपोर्ट तो कभी नहीं,
दो दफा मैं भी गया हूँ, मेरा भी उन्होंने पासपोर्ट जमा किया, उन्होंने कहा जाइए, जब मैं इनको देखने गया हूँ ढाई घंटा हो गया ये नहीं आई, तो मैंने अपना पासपोर्ट जमा कराया, मैं अपना पासपोर्ट जमा करा के गया, वापस आके फिर मैंने उनसे अपना पासपोर्ट दिया, उस पर कहीं एंट्री नहीं लगी।
एंट्री लगवा ली।
ठीक, अगर एंट्री ही लगती है तो मेरे पासपोर्ट में भी लगती ना, तो मैं पासपोर्ट जमा करा के गया उनको देखो।
तो मैडम इन्होंने आपसे कहा कि आप आगे जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा, आपने कहा इनसे कि आप जाएं काफिला लेके,
इन्होंने मुझसे कहा आप काफिला लेके चले, मेरी बात हो गई है, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, पहले आप जाएं,
मैं तो अंदर ही
थी,
मैं तो अंदर ही थी।
चलो ठीक है, मतलब ये इन्होंने ये बहरहाल,
और ये भी इस चीज की गवाह है कि आप ये भी पूछ ले काफिले में मैं इनकी कितनी हेल्प करी और कहां कहां करी।
चलो हम अच्छी बात है, आप जरूर यकीन अच्छी बात है, अब हम सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं किसी तरह।
सोल्यूशन की एक आवाज इनकी ये भी आई है कि हम काफिले वालों से बात कर लेते हैं और 50-50 के ग्रुप भिजवा देते हैं, मकसद जैसे भी जो भी हम टिकट्स पे करते हैं 16,500 ये जो भी है, मजीद जाहिर से आप पैसे लें और पैसे लेने के बाद उनको 50-50 के ग्रुप में, 60-60 के ग्रुप में, 20-20 के ग्रुप में भिजवा देते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप ये सारा काम करते हैं, ठीक, हर वो आदमी जो बेचारा आया था यहाँ पे, आया था पंजाब से या दूसरे शहरों से आया था, उसने 15-15 दिन बेचारा यहाँ पे रहा, ऑफिस से सब जगह से छुट्टियां लेके आया, सब उन्होंने यहाँ पे खर्चा किया, आप मजीद उनसे पैसे लेंगे, उनसे प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको भेज देंगे, पहली बात तो ये कि आप पे उनका ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, वो आपको पैसे देंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो आपको पैसे देते भी हैं तो चले, अगर आप 60% में से 20% को मैच्योर कर लेते हैं, उनके ऑफिस हैं, उनके बिजनेस हैं, उनके सब कुछ है, जो छुट्टियां लेके आए थे उनकी छुट्टियां सारी खत्म हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, 20% लोग आपके साथ चले जाते हैं, 40% जो रहते हैं उनको क्या ये पे करेंगे?
नहीं नहीं, हम किस तरह हम ऑन सी सी सवाल करते हैं ऑन भाई, बात सिर्फ इतनी सी है और बहुत बुरा हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है, हमें उसकी सलूशन की तरफ जानना चाहिए। यानी कि मेरे पास एक ऐसी कॉल भी आई कि एक आदमी जो रो के ये कह रहा था पारा चनार से कि मैंने 20 साल के अंदर पैसा जोड़ जोड़ के हलाल पैसा जमा किया है, 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 100 रुपये करके मैंने 60,000 रुपये जमा किए हैं, और ताकि इस तरीके से मैं अपने मौला की ज़ियारत के लिए जा सकूँ। हमने उससे कहा कि यार हम तो आपको किसी और के साथ भिजवा देते, लेकिन वो इतना रो रहा था, वो कहता था मुझे नहीं जाना किसी के पैसे से,
सोने के कड़े
मैं अपने अपने पैसे से जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये एक मैसअप हो गया, गड़बड़ हो गई और आप आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप उसका पार्ट हैं, लेकिन अब हमें अगर हम इसके सलूशन की तरफ जाना चाहें तो आपके जहन में कोई सलूशन है किसको हम किस तरीके से वो कर सकते हैं? ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं इसको हम वेरीफाई करेंगे, अगर आपकी आपको वो मतलब प्रॉब्लम ना हो तो ये आप अली लाल जी साहब को दे दीजिएगा, हम इसको वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और हम नाज़रीन के सामने ज़ायरीन के सामने एक पॉजिटिव चीज़ रखेंगे कि ये पॉजिटिव से मरा दिए, हम असल पिक्चर रखेंगे कि है क्या असल पिक्चर, क्या है जो एक्चुअल पिक्चर है। जमीर साहब ये कहते हैं कि आप उस खुराफात का, आप उस चीज का पार्ट हैं, यानी कि वो जो भी कुछ बदनीयत ही है आप उसका पार्ट हैं।
बोलने दिया
जी, बिस्मिल बिस्मिल, आप बोले, खुल के बोले।
अगर बदनीयती का हम हिस्सा होते या पार्ट होते तो आज हम भी मंजर आम पे नहीं होते। अब तो मसला ऐसा है कि जो पकड़ में आ रहा है उसी से सवाल जवाब पूछ गछ होती है।
ठीक है,
ठीक है ना, जितनी बातें हमने भी बहुत सुनी है, हमने उस बात मैंने बहुत सुनी है लोगों की, और उसकी वजह यह है कि अली जाफर जो है वो मंजर आम पे नहीं है। अगर वो मंजर आम पे आ जाता तो इतने सारे मामला होते ही नहीं इस तरफ से, जो भी उतना मैसअप हुआ।
हम कम से कम नहीं कह सकते हैं कि अली जाफर की नियत है।
एग्जैक्ट, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, हमारी नीयत क्या थी, सबकी नीयतें अल्लाह जानता है, हमारी नीयत भी खुदा जानता है कि हम यहाँ पे आए हैं, और हम भी काफ़ी दिनों से फ़ोन पे कांटेक्ट में थे रजा भाई से कि यार हमें किसी तरीके से आप मिलाएं, बात करनी है हमें भी, लोगों को मसला हल होना चाहिए, मसले का हल निकलना चाहिए। थोड़ी बहुत हमने भी भाग दौड़ की है, एक साहब हैं वो भी खोजा कम्युनिटी से ही हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपने लोग कर लो मैक्सिमम, कितने कर सकते हो, इराक की जिम्मेदारी मेरी।
ठीक है,
इराक का उनका रहना खाना पीना रिहाइश ज़ियारत मेहरान टू मेहरान मेरी तरफ से।
ठीक
ठीक है, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं तुम नंबर ऑफ पर्सन बता दो, लेकिन अरबईन के बाद।
ठीक है,
अरबईन के बाद तो रश खाली हो चुका होता है, कोई मखसूसी भी इतनी नहीं होती है, अब तुम्हारे को उसमें अकोमोडेट कर दूंगा मैं, तो अपने नंबर ऑफ पर्सन कर लो जितने भी हो सकते
हैं।
तो उसी के ऊपर सारी बातें हो रही थी, मैं बुखारी से बात हुई, उनका 342 टिकट है। जब अली असगर
मिला
तो उन्होंने इनको 16,500 बताया। जब मेरी मुलाकात हुई है 4 से 5 दिन पहले शायद, तो उन्होंने मुझे 30,000 रुपये बताया। जब मैंने इससे डिस्कस किया, इसने बोला ऑनलाइन मुझे 16,500 बताया, मैंने बोला उसने मुझे 30,000 बताया। तो एक काम करते हैं, चल के बुखारी बजा के बैठ जाते हैं कि भाई तूने हमें क्या बताया और तुम्हें क्या
बताया।
आज मैं बुखारी किया हूँ इस हवाले से, वो कहने के मैंने उसे कहा कि आपने मुझे 16,500 बताए थे, नहीं बताए, कहने मैंने बताया था। मैंने कहा तो फिर अब 30,000 कैसे हो गए। अच्छा, मेरे साथ एक जायर भी गए साथ इस पूरे मामले में, कोई ना कोई जाहिर मेरे साथ जरूर जाता है। उसको वो कहने 16,500 मैंने बताया था, मैंने कहा तो अब क्यों रेट हो गया चेंज। तो कहने लगे वो मसला ये है कि हम जो है ये 215 टिकट को रिफंड कर देंगे, रिफंड कर देंगे, एयरलाइन ने हमें परमिशन, एयरलाइन से बात हो गई वगैरह, रिफंड कर देंगे। जब मैं रिफंड कर दूंगा तो ये 39,000 का टिकट है फॉर एग्जाम्पल, 39,000 का टिकट है, मैं रिफंड करता हूँ 5,000 रिफंड चार्जेस कटेंगे, 34,000 की होगी। मैं आपको 16,500 में दे दूंगा तो मेरा तो लॉस हो गया, मैं एयरलाइन में टिकट इशू हुआ है,
ठीक है,
मैंने उसको रिफंड कर दिया एयरलाइन में, एयरलाइन कह रही रिफंड कर दो, रिफंड कर दिया। अब 5,000 कटे तो 34,000 बचे, 39,000 का फिर 5,000 के डिफरेंट चार्जेस कट गए। अब 34,000 रिटर्न मुझे हो रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हो वही टिकट मैं आपको 16,500 में दे दूँ। तो मैंने कहा उनसे सवाल ये क्या, मैंने कहा जिस वक्त आप मुझसे मिले थे उस वक्त ये नहीं पता था आपको, तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं उस वक्त तो ये बात तो कैलकुलेशन पे थी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था मतलब मैं कंफर्म नहीं थी। तो मैंने कहा उस वक्त आपने मुझे ये बात की, चार लोग गवाह थे उस बात के, और ये जाहिर भी साथ बैठे भी तो मेरे साथ थे, कि भाई आपने बोला 16,500 में हो जाएगा। उसके बाद जब हमारी उनसे बहुत बहस होती रही तो उन्होंने कहा अच्छा सही है, मैं आपके लिए एक फेवर कर सकता हूँ। मैंने कहा आप बताएं फेवर क्या करेंगे। कहने के जो 92 टिकट थे जो नो शो थे, जिसके आप मुझे कह रहे थे 30,000 रुपये पर टिकट चार्ज होगा, वो मैं आपको 25,000 में दे दूंगा।
सर इसका मतलब मजीद मैं सब कुछ भी नहीं होना इसका,
सही है।
अब दूसरा रिजल्ट और उसके बाद वो जमीर वाली बात के, वो जो लोग लाहौर से इस्लामाबाद से वो भी तो खर्चे हैं ना, वो वहां से फिर दोबारा आएगा।
नहीं सर, मसला ये होगा जिस वक्त ये असगर ने बात करी थी बुखारी ने, तो उन्होंने कहा 16,500 में होगा। फिर जिस वक्त ओन भाई ने बात करी तो उन्होंने कहा 30,000 में होगा। तो बुखारी वाले बेवकूफ नहीं, उन्होंने भी पार्टी देख के बात करी है, ओन जरा भारी पार्टी है, तो उन्होंने कहा ओन से हम 30,000 लेंगे, आपसे 16,500
लेंगे। नहीं
फिर मैंने इसका एक रिजल्ट ये निकला इसका, जब हम लोग वापस, अभी मैं आ रहा था वापस, तो मैंने शाहीन एयरवेज मैंने फ़ोन किया, मैंने वहाँ उनको कोटेशन दिया, उन्होंने कहा कल मुझसे आप कोटेशन ले लें। मैंने तबान एयर में बात की, मैंने कहा मुझे
कल बात सोल्यूशन की तरफ ऑन, अगर कुछ आप मैंने सोल्यूशन दे सकते,
ठीक है, जो टिकट्स पड़े हैं वो यूटिलाइज हो जाए।
नहीं हो सकते सर, आप सोचे ना कौन देगा ये 30,000 रुपये, 60,000 रुपये देने के बाद कौन देगा 30,000 रुपये, और 30,000 छोड़िए, 30,000 है नहीं, 30,000 ये है, कल आप बात करेंगे पेनल्टी चार्ज लग जाएंगे, वो बात है। अल्टीमेटली 60
सर, अनार का सीजन खत्म हो गया, आम हो गया मार्केट में, आप अनार बेच रहे हैं,
अनार और नहीं हो सकता। एक अहम बात ये है कि जो लोग आपके जायरीन है वो तो दूर दूर से आ रहे हैं, अब वो जब दूर से आए तो उनका भी इन्वेस्टमेंट भी है। फिर सबसे ज्यादा अहम बात ये कि जब आदमी डसा हुआ होता है ना, वो ये कहता है कि ये फ्रॉड है, ये चोर है, तो वो मजीद पैसे देता नहीं, फिर वो कहता है यार जो अब बच गया जो मेरे पास है उसको तो अपने पास रखो। इसका सलूशन क्या है? सिर्फ एक सलूशन हो सकता है मेरी नज़र के अंदर, वो ये कि जमीर साहब विक्टर है, मैं इनको बोलूँ मैं ईरान इराक की ज़्यादा तुम्हें मुफ्त करा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं,
कोई सलूशन।
लेकिन
मेरा ख्याल है आप बताएं, मिसाल के तौर पर लाहौर के लोगों को बोला ठीक है तुम्हें लाहौर से फ्लाई करवाएंगे और फ्री करवाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है जो आपके खोजा के जो जिसकी बात करें?
तो होटल का मुझे खाली बताया, होटल में आपको कर दूंगा, और जो भी तुम्हारी कैपेसिटी है इंडिविजुअल कैपेसिटी तुम जो बता दो मुझे और मैं करवा देता हूँ,
ठीक है। मतलब एटलीस्ट ये ज़रूर है, अभी कह रहे हैं कि इराक के अंदर जो भी होगा होटल्स खाना पीना वो सब फ्री होगा,
वो फ्री
है। इवन ये कि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब
कर्बला में रिहाइश
होगी,
सब देखते हैं ना अभी, पहले
कर्बला में रिहाइश होगी और अप एंड डाउन कर्बला से ही होगा,
इवन नजफ
जाएंगे और आएंगे, सेम डे सुबह जाएंगे शाम में आएंगे।
अच्छा होटल उनका असल होटल वहाँ पे होगा ना, उसकी वजह से वो सिर्फ वहाँ जाएंगे आएंगे, ठीक है। अच्छा ये ये ऑप्शन मौजूद है, और ईरान के अंदर?
ईरान में नहीं है अभी तक, अभी तक कोई ऐसा
कोशिश कर रहे हैं उसकी? आप
कोशिश कर रहा हूँ।
मैडम आप कुछ बता सकती हैं ईरान के बारे से?
भाई देखिए अगर हमारे पास पैसे हों तो हम सबको फ्री करवा देंगे,
अब हमें इस फील्ड में आके हाँ तो अभी हम अपने मोबाइल बेच के काम चला रहे हैं, ये
12 साल तो होगा
लेकिन अभी क्या है, दुनियावी हालात ऐसे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि मामला हल हो, कोई हमें साथ दे, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं, कोई ऐसा हो जो हमारा साथ दे के हमें इस दलदल से निकाल दे, या हम भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि हम अगर कोई काफिला बनाते हैं तो उसके अंदर पाँच दस करके लोग हम उसमें कंपनसेट करें। टाइम जरूर लगेगा ज्यादा सबकी हो, जो लोग रह गए हैं या इवन जो लोग चले भी गए थे जिनका इराक नहीं हुआ उनको इराक करने की भी कोशिश करेंगे।
मेरा तो मेरी अपनी आपसे रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह खुदा आपको किसी काबिल करे कि आप ले जा सकें लोगों को, तो सर जितने भी लोग थे 1260 थे जितने,
मैं वही बोल रहा हूँ
कि सब डिजर्विंग है,
सब
नहीं जो ईरान हो के भी आ चुके हैं।
भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वो तो इराक नहीं गए ना, बेसिकली मेन हदफ तो इराक था,
एक बात और भी हो सकती है, आप जायरीन से बात करें, आप उनसे बोलें कि हम आपको ईरान नहीं ले जा सकते, ये 60,000 के अंदर जो आपने हमें 60,000 दिए थे
करबला
करा, हम आपको सिर्फ और सिर्फ इराक करा दें,
ठीक है
इराक, और मेरा ख्याल ये कि हर जाहिर राजी हो जाए।
वही मैं कह रहा हूं ना, जाहिर का फेस अभी एकदम से नहीं हो सकता, ये अभी एकदम से नहीं हो सकता।
तो फिर अब ये मुझे बताएं कि आप तो सामने नहीं है, अच्छा आप सामने इसलिए नहीं है, जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इसका फिर सोल्यूशन क्या है जब आप सामने ही नहीं है, ना आप सामने
नहीं,
तो अब कौन तो किससे बात करेगा और किस जगह बात करेगा,
अभी तो ये हमने सोच ही लिया है कि अब सामने ही रहना है।
सामने आया अगर हमें, मैंने तो लोगों से ये भी कहा था भाई मुझे मार के जनाजा उठा के लब्बैक कहते हो निकल जाओ सबको,
करबला नहीं जाते,
करबला ही जाते, नियत होती है तो करबला पहुंच जाते,
उस पर नहीं जाते, नियत आपके
जाहिर ऐसे थे कि जिनको देख के इराकी कह रहे हैं ये क्या लेके आई हो,
गुलिस्तान जौहर से नियत सही नहीं थी तो करबला क्या
जाती है। चलो अब ये अलग डिबेट है ना बॉस, हम तो सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं कि किसी तरह से चीज रिजॉल्व, मेरा ख्याल ये
हर जगह नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, पॉजिटिव सोचा जाता है,
कोई सोशल मीडिया को यूज करें या सामने आए लोगों से बात करें और सोल्यूशन की तरफ आए
इंशाल्लाह,
और मतलब ये ऐसा ना हो कि कोई जाहिर मुझसे नाराज हो जाए कि बिलाव ये तुमने मेरे ईरान के चक्कर में रुका दिया, बात ये जाहिर को भी समझना
चाहिए, हमारे जाहिर ऐसे थे ईरान जाने ही नहीं।
वैसे आपके पास 60,000 का ब्रेकअप क्या था, किस तरह से आप 60,000
मैंने बताया ना, 40,000 रुपए का टिकट, 6,000 रुपए का वीजा, 2800 रुपए का ईरान का वीजा, 5,000 रुपए की इराक की रिहाइश, 4,000 रुपए की
रिहाइश, 5,000 रुपए कैसी रिहाइश होती है इराक के,
क्योंकि वो फर्शी निजाम था,
तो फर्शी निजाम
$5
पर पर्सन,
पता
नहीं सर
उस वक्त भी कुंभ के अंदर जहाँ पे इन सब की रिहाइश थी बीबी मासूमा कुंभ के हरम के बैक साइड के ऊपर 10,000 तुमान फी नफर, फी
300 रुपए
वो मैंने भी इतने में करवाए थे, मुझे भी मिली थी,
लेकिन बहरहाल फिर इसका मतलब ये कि बदनीयती अपनी जगह मौजूद है कहीं ना कहीं, और मिसमैनेजमेंट तो अपनी जगह, इसमें कोई शुबा नहीं है, चीज़ मैनेज ही नहीं है, किसी तौर पे मैनेज नहीं है।
और सर वो जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मकसद एक प्रॉमिस किया था आपने कि ये प्रोग्राम कटेगा नहीं एज इट इज़ जाएगा, तो
नाम कटेंगे सर, नाम नहीं ले सकता हम किसी का,
हाँ नाम तो कटेगा
ना, प्रोग्राम एज इट इज जाएगा,
ये इसमें
जो आपने बोला है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑन जाफरी साहब को और मैडम को अगर कुछ भी कहना है जरूर बोले,
नहीं ये तो हमने कहा ना अजमीर भाई कि अगर फ्रॉड होते या चीटर होते या बदनीयती
होती तो पहले भाग जाते, पहले तक जाते,
यहाँ पे नहीं होते, मैं वही बोल रहा हूँ लोग अब सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, सिर्फ जबान अल्फाज है, यूँ है बोलने बोल यूँ रहे क्योंकि अभी हम डसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लोगों की चीखों पुकार सुन रहे हैं, और तब एक तरीके से कह लें कि कैजुअल लैंग्वेज में लोगों के काड़े हो गए,
सही
ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं दिल से और खुदा से मदद ये मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मसले से हम भी निकले,
ठीक है,
कोई इतना मुतासर नहीं हुआ जितना मुतासर ऑन जाफरी हुआ,
ठीक है
ऑन जाफरी के ऊपर आज कोई इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं आज बेच के जायरीन को भेज देता। मुझे इस बात का जितना अफसोस है और जितना हर नमाज में हर सजदे में जो खुदा से माफी मांगते हैं कि क्या हमने ऐसी गलती कर दी थी तो ये सजा में मिल रही है, जान के अनजान के लोग नाराज हुए, जाहिर को इमाम हुसैन नहीं ज्यारत हो सकी, उसके लिए जितने हम अपनी नजरों में या हमारा जमीर, मतलब एक चीज तो है ना, उस कंपनी में काम तो करते थे, बॉस भाग गया जो भी था, लेकिन उस कंपनी के उस वक्त, मैं इनकी बात से एड्रेस करता हूँ जमीर साहब की, कि उस वक्त हमें बोलना चाहिए था और एक एक करके, जैसे अली असगर ने भी बोला, मैंने इनफैक्ट मैंने खुद अली जाफर को बोला कि भाई नहीं करो यार, एक बुराई ले लो यहाँ पे खत्म कर दो, यही पिट लो अच्छा है। लेकिन अगर मैं, मेरे दिल में इतनी सी भी अगर कोई डाउट होता तो मैं लोगों को फोन नहीं उठाता, लोगों को फेस नहीं करता, मैं आज यहाँ पे मौजूद नहीं होता आप सबके बीच। तो इस चीज का मेरे हिसाब से 1% शायद ये सबूत, 99% तो खैर नहीं, 1% शायद सबूत ये है कि भाई मैं भी कुछ फेर हूँ कहीं किसी ना किसी हद तक, और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरी बात भी हुई है अजमत से, अजमत भी मुझे काफ़ी इनरोल्ड कर रहा है कि आप सामने आओ, हमें आपके साथ हूँ, जो चीज़ें हैं जहाँ मिलना है मिलके बैठ के बात करते हैं,
जमीन भी साथ हैं आपके, और बातें कुछ भी करें लेकिन साथ
नहीं, नहीं। बिल्कुल, अगर किसी जाहिर का कुछ होता है, कुछ होता है।
और शुजा भाई मैं फिर ये बात रिपीट करूंगा, हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि हम जाहिर को किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट करें।
लेकिन वही बात है, जब हम भी वहाँ एम्प्लॉय थे तो हमारे पास कोई पेमेंट तो नहीं ना, अब ये लोग हमारी नियत पे शक कर रहे हैं कि हमने पेमेंट दबाई
बैठे, इसलिए शक करें ना मैडम कि आप
हमें
3 महीने सैलरी नहीं मिली तो हम किसके पास जाके
रोएं?
वहाँ आपने मतलब ये डायरेक्टर नहीं,
1200 जमा हुए, इनसे सवाल किए जाए किसके मुंह पे जमा हुए, वहाँ औरतें कह रही थी कि न जाने किसकी वजह से अगर यहाँ आके 4 कदम बाद इराक नहीं मिल रहा, 4 घंटे बाद करबला नहीं मिल रही, तो कोई खुदा की मसलियत भी हो सकती है। नहीं, उस वक्त तो लोगों को मसलियत नजर नहीं आ रही,
मसलियत नहीं, ये खुदा की मसलियत नहीं,
नहीं एक बात, जब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं 3 दिन से आपके साथ खड़ी हूँ तो आप मेरी नियत पे कैसे चेक कर रहे हैं? मैं पागल थी पिटने के लिए बॉर्डर पहुंच गई थी, अब सवाल आपसे कर रही हूँ, मैं पागल थी जो करबला के बॉर्डर तक
मौजूद नहीं
है की नियत
सर। बात सिर्फ इतनी सी है, देखिए मैडम,
देखिए
जब बात होती है तो जाहिर बात है बहुत सारी बातें निकलती हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही कि जाना ही नहीं चाहिए था, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है बात, और आप जैसी खातून जो 10 दफा काफिले ले जाती
है, मैं गई नहीं, जो मेरे साथ गया उससे पूछिए, उससे कहा समीना ऐसा कर ही नहीं सकती,
मैंने देखा आपको पहले भी आप काफिले ले जाती रही हैं,
आप मुझे मिले थे शाबान में,
जी जी मैं जानता
हूं, मुझे याद है आपने कहा था दुआए कुमल पढ़ने हम आएंगे, मेरे साथ उस वक्त भी 50-60 लोग थे,
जी जी मुझे मालूम है, वो मेरे इल्म में
वापस प्रोग्राम में आ जाए,
लेकिन हां उन्हें वापस आ जाएंगे प्रोग्राम में, कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक ख्याल ये है कि अब आप प्रोग्राम में दोबारा नहीं,
असल में इस
और मैंने मेरी बिल सुन ले, प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है, आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं थे किसी भी हवाले से, किसी भी उसके अंदर कोई साइन नहीं करते थे आप, तो सर बात सिर्फ ये है कि जो सामने जो जाहिर आपके पास आ रहा है पोर्ट्रे ये हो रहा है कि ये 4-5 डायरेक्टर्स हैं, तो वो तो आपको सब
यही डायरेक्टर हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्टर नहीं थे, वहां पे चपरासी भी डायरेक्टर होता था और हम विजिटिंग कार्ड पे डायरेक्टर नहीं बनते, ये एक और फ्रॉड है,
एक और
फ्रॉड, डायरेक्टर नहीं थे लेकिन एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं,
हमारे एमडी ने हमें दर्जा दिया और डायरेक्टर का बाकी तो कहीं हम लिखे नहीं, तुम्हारे सामने पेमेंट आदि देने
से एक मिनट, सॉरी सॉरी मैं सब बोलता हूं, उस समय आवाज नहीं आएगी,
हर चीज को नेगेटिव
है, इसको
देख सकता हूं,
बिल्कुल जो जो अपने जरिए से अपने रिसोर्सेज से चेक करवाना चाहे वो करवाए, इसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई है वो अली जाफर के नाम पे।
सर मुझे बताएं बैंक के अभी गुलिस्तान जौहर जो है उसमें आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, उसमें आपका अकाउंट है?
मेरा अकाउंट है बैंक के हबीब के अंदर, मैं मैंडेटरी था,
कारवान का
उसका कारवान का अकाउंट है, मैंडेटरी था, मैं अली जाफर नहीं था तो मैं साइन करता,
इसका मतलब
आप साइनिंग अथॉरिटी हुए ना,
मैंडेटरी था अकाउंट, एज अ डायरेक्टर अकाउंट या पार्टनरशिप अकाउंट नहीं था,
कारवान का अकाउंट
था, कारवान का अकाउंट था, अगर
उसमें आप साइन
कर नहीं था तो आप यूज करते थे उसको,
मैंडेटरी अकाउंट था
सर, डायरेक्ट नहीं, मुझे बात करने ना, मुझे बात करने ना,
मैंडेटरी अकाउंट,
ये कैसे साबित होगा सर मैंडेटरी अकाउंट
है, ये आप जहां तक की इंफॉर्मेशन मिली है उनसे साबित होगा,
मकसद ये कि आप साइन तो कर रहे हैं ना, वहां से पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वॉल्व है ना,
इन्वॉल्वमेंट उस वक्त तक है जब अली जाफर सामने नहीं है, जब वो है मौजूद तो वही साइन करेगा, और उसके बाद जो
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक जरिया तो मौजूद है ना पैसे आने जाने का,
तो ये बैंकर बताएगा ना,
अभी आप कह रहे थे मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं
हूं, मैंडेटरी हूं, मैंडेटरी साइनिंग अथॉरिटी हूं, मैं कोई पार्टनरशिप या डायरेक्टरशिप पे नहीं हूं, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये होता है सर कि सिंगल मेंबर कंपनी,
सही,
सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही डायरेक्टर होता है जो कि अली जाफर था, उसका सेक्रेटरी अख्तर जैदी था जो उसका बहनोई,
सर फिर ये बात देखे ना आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे आप, लेकिन ये एक नया फ्रॉड है कि आप कार्ड से आप बात करें, मैं डायरेक्टर हूँ, फेसबुक के ऊपर
बुक्स
के अंदर एक ही डायरेक्टर है, इसमें एक ही डायरेक्टर,
एक ही डायरेक्टर और सेक्रेटरी अख्तर जैदी है,
तो सर ये फिर क्यों है, आपने इस पे भी एतराज नहीं किया कि ये क्या डायरेक्टर लिखा है तुमने मेरे नाम के साथ,
हमें यहाँ इस मंजिल पे पहुंचने का अंदाजा होता, बहुत कुछ स्टेप उठा
लेंगे मैडम, बात से विद्दी सी है, अमेरिका के अंदर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर चलाता है अमेरिका का किसी भी जगह, लेकिन जब एक्सीडेंट होता तभी पकड़ा जाता है कि लाइसेंस
नहीं होने पास, सही बोल रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं सर, इसमें कोई नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम फ्रॉड है या भाग रहे हैं या चीट है,
अरे आपने क्या फैसला किया, आपने माशाल्लाह आपने यहाँ के फेस किया, सख्त सवाल के जवाब दिए, और मुझसे ज्यादा सवाल आपसे जमीन ने सख्त कर दिए,
अब आपने क्या राइट,
ठीक हाँ ठीक है, मैंने भी इसलिए, और ये एज इट इज जाएगा जैसा
जाना भी चाहिए,
सिर्फ नाम हम कट करेंगे जो हमने
आपने
दे दिया नाम जितने ये अब रजा साहब को देखना पड़ेगा कि नाम जो है ना वो कट करने हैं, अभी हम आपको दोबारा भी दावत देंगे इंशाल्लाह जब महसूस करेंगे, मुझे ये बताइए कि आपने फिल वक्त क्या इरादा किया है, कि आप कोई दफ्तर लेके बैठ रहे हैं या फोन पे हैं मौजूद या सोशल मीडिया पे मौजूद हैं या क्या,
देखिए सोशल मीडिया भी मौजूद हूँ,
ठीक है,
एक ग्रुप बना हुआ है उसका यानी अल निजात के नाम से शायद, अल निजात कमेटी, उस पर भी हूँ मैं, मोबाइल पे भी हूँ मैं, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सब लोगों को इसी साल में या ऑनवर्ड्स एक लोग जाना शुरू हो जाए किसी भी तरीके से,
ठीक ठीक,
साइकिल बन जाए,
अभी जैसे मिसाल के तौर पर अरबईन आ रहा है और अरबईन के लिए आपने पैसे उनसे रिसीव किए होंगे लोगों से, तो वो पैसे भी उसी में
सब उसमें ही,
और जो टिकट्स उनके लिए कम से कम वही,
देखिए टिकट्स तो हमारे यही हैं 342,
तो यूज नहीं हुए होंगे ना
342 टिकट जो बता रहा हूँ आप,
अरबईन वाले
अरबईन ये आशूर के ही है, इसको हम अरबईन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका ये है एक तो इराक का वीज़ा अभी टाइम नहीं है आई गेस कि वो ऑनरेबल शायद नहीं
हो रहा, ये अरबईन के कितने लोग हैं
50,
और ये भी इनके पैसे भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
बिल्कुल सर
10 लाख
और जैसे मकसद ये
अरबईन के 10 लाख थे मेरे,
और जैसे ये ऑन भाई ने जैसे बताया कि अब ये सबको फेस करेंगे और अपने मोबाइल पे भी आप
देंगे, आपके पास कोई सलूशन है इसका,
एक सेकंड जल्दी से आपको जवाब देता हूं, और भाई ने कहा कि जैसे मैं सबको फेस भी करूंगा और सोशल मीडिया पे भी हूं, ग्रुप में भी हूं, सब भी हूं, और मैं प्लस मोबाइल भी सबके अटेंड करूंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं परेशान हैं और इनसे बात करने के लिए बेचैन है, तो बेहतर होगा कि अगर ऑन एयर अपना मोबाइल नंबर भी आप बता दें कि आप किस नंबर पर अवेलेबल,
वही नंबर जो मेरा पिछला नंबर था,
रिपीट कर दीजिएगा
0332334535,
सही है सर, अब इतना ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल था कि इनको ऑन एयर नंबर बताएं,
नहीं खैर हो गई सर, जब बंदा क्लियर है ना,
क्लियर है ना वो क्लियर है और फेस करने के लिए एग्री है तो बताना चाहिए,
मतलब मेरी
ये भी बता दे कि
कॉल आ रही थी,
अच्छा ये भी
मैं एक जगह बैठा हुआ था, मुझे बंदे ने फोन किया, मैं एमआई से बात कर रहा हूं, मैंने कहा एमआई इतनी गिर गई है, ऑन एयर बात कर रहा हूं, एमआई इतनी वो गई है कि मुझे 60,000 रुपए के लिए फोन कर रही है, तो भाई आगे ले जाओ मुझे, आपके पास तो लोकेशन की अथॉरिटी सिर्फ एमआई के पास है, ठीक है ना, और तो किसी के पास, तो हमने भी देख लिया बहुत से लोग बोल रहे थे कि हम अली जाफर को उठवा लेंगे, लिखवा लेंगे, ये करवा लेंगे, लेकिन वो नहीं हो सकता,
नहीं लाई नहीं कहाँ गया,
तो ये सब चीजें थी, हमें भी फेस कर रहे थे।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप सोशल नेटवर्क पे भी मौजूद हैं, फोन नंबर भी आपने दे दिया, مزید کا کوئی اور بات کہنا چاہیں گے
اور کہیں گے ہم بھاگے نہیں ہیں, یہ تو اس چینل کا بہت شکریہ ہے
PCN
کا بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں بلایا موقع دیا
PCN نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کے لیے, ہم بڑے شکر گزار ہیں اس کے کہ
نہیں لوگ
نہیں میڈم میں ایک بات بتا دوں کہ لوگوں کے دل بہت دکھے ہوئے
تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی بات مان لیں کہ لوگوں کا صرف 60,000 گیا ہمارا کیریئر گیا ہے
آپ کا
کیریئر
مجھ سے بات کرنے دیں میں بات کر رہا ہوں نا میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کا کیریئر آپ کی اپنی وجہ سے گیا
وہی
ہم ان کا 60,000
وہ آپ کی
تو مقصد یہ کہ آپ مظلوم میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں آپ مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پارا چنار والا جو آدمی جو فون کر پہ رو رہا ہے آپ یقین جانے کہ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے لوگ بدعائیں کر رہے ہیں
آپ یقین آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میرے کیئروں میں ایک آدمی ہے انٹیریئر میں کہیں رہتا ہے بحث بیچ کے اس نے پیسے دیے تھے وہ بہن جو اس کو کھلاتی تھی پلاتی تھی اس کا گھر چلاتی تھی
میرے ریفرنس کا کوئی بھی نہیں گیا لیکن وہ اب بھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے
اپنی بہن بیچ کے اس نے اپنی بہن بیچ کے پیسے لا کے دیے 60,000
جی
تو ہر ضائع اپنی جگہ اس کا وہی مقام ہے
بالکل ایسا ہی
جس نے کچھ بھی بیچا جانے کے لیے
بالکل
تو ہماری ہم سب کی دعا اور استغاثہ اور خواہش اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ
سولوشن کی طرف
جائے
میں صرف ایک بات صرف ایک چھوٹی سی بات ہے اس کا جو سب سے بڑا جو ایشو جو ہے نا جس پہ بات نہیں ہوئی وہ ایک چیز ہے صرف چھوٹی سی اگر آپ اس کو سمرائز کریں نا تو اس میں دو فلاز ہیں پورے کیس میں اور میرے خیال سے وہی کافی ہیں بتانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ویزا نہ ہو تو ٹکٹ ایشو نہیں کرنے چاہیے یہ غلطی ہوئی
اور بات کر چکے
اور جو ویزا نہیں ہے
ہم
جانا بھی نہیں چاہیے تھا
ایران کی ویزا
ایران
کی
ویزا ہاں
ایران کا ویزا نہیں تھا ٹکٹ ایشو ہو گئے تھے تو یہ لاس جو ہوا تھا یہ بقول علی جعفر کے کہ ہمیں 2 کروڑ روپے کا لاس ہو گیا ٹکٹوں کے اوپر اس وجہ سے ہم جو ہے ڈگمگا گئے دوسرا نہیں تھے جو یہ بات میں نے اچھا یہ بات میں نے آن ریکارڈ آفس میں یہ بات کہی ہے کہ جب ویزا نہیں ہے تو نہیں بھیجو لوگوں کو اور اس کے گواہ خود ہیں کہ یہ بات ہوئی آفس کے اندر کہ نہیں بھیجو اور
نہیں جانا چاہیے تھا
نہیں جانا چاہیے تھا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے تھا یہ بات حقیقت
ہے میں وہی بتا رہا ہوں جیسے ضمیر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اصل حشیر بھی نہیں پتا کہ وہاں ہوا کیا ہم تو ٹھیک ہے جو وکٹم ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ لاسٹ کڑے میں دیکھ رہے ہیں
کی ٹرمنالوجی کے اندر کہ ٹریلر کیا ہے وہ تک نہیں پتا تو فلم کیا ہوگی وہ کیا ہو وہ تو ایکسٹریم ہی ہو جائے گی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں وہاں پہ ظاہر تھا
اس منزل تک آئے جو میں 10 قافلے لے کے جائے 10 ماہ لے کے جا رہی تھی اس میں نے بھی کچھ نہیں پایا آج دیکھا میں بھی آج خالیات کھڑی ہوں مجھے خود افسوس ہو رہا ہے
اچھا چلیں ٹھیک ہے اب جو مطلب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اون جعفری میڈم سمینہ غور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات اہم ترین بات جو زائرین کو کسی طور پہ سلوشن جو علی اس کا سلوشن دے رہے ہیں میرے حساب سے وہ بالکل بیکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز 16,500 پہ دی ہے وہ 30,000 کے اوپر چلی گئی ہے اب جب تک آپ زائرین اور جو آدمی بھگتا ہوا اس کے لیے 30,000 روپے تو
ایسے ہی ہو رہا ہے
تکلیف ہے ٹھیک ہے نا اچھا پھر اہم ترین چیز جو ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا سلوشن تلاش کرنے کے لیے اس کا کیا سلوشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اس کو وہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ان فیوچر کیونکہ دیکھیے کاربن آف پرائڈ کو اب کوئی آدمی کچھ نہیں دے
بالکل
بات اون جعفری کو اب کوئی کچھ نہیں دے گا سمینا گوہر کو میں نے دیکھا میں نے دیکھا نہیں میں عرض کروں مثال کے طور پہ آپ اعلان کرتی ہیں جناب آئیے جی اب 1,25,000 روپے میں چلیں تو کوئی بھی نہیں دے گا اگر پیچھے سمینا گوہر کا نام ہوگا یا اون جعفری کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا تو کیریئر ختم ہو گیا تو وہ یہ چیز اب نہیں ہوگی اب نہیں کوئی دے گا اب کوئی بیوقوف نہیں بنے گا اچھا بیوقوف ان دا سینس کہ اچھی بات ہے جو آ رہا ہے وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ فراڈ ہیں آپ غلط کر رہے ہیں اب جو ضمیر صاحب ہیں وہ یہی پروپیگیٹ کریں گے جہاں بھی ملیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے یہی بات ہوگی جو اور دوسرے وکٹر ہیں وہ بھی یہی بات کرے گا جو مطلب کیا ایسی سچویشن میں آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں
شجاع بھائی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے کہ ہم گروپ سے گروپ بنا کے हम अपना नाम या अपना चेहरा या अपना साथ लेके नहीं आए, कुछ नए लोगों के साथ।
क्या बात है, मिसाल के तौर पर किसी कारवान के साथ
आप चार आदमी के साथ कोई ऐसा कारवान बनाए, नए नाम से नए चेहरों से क्रिएट करें। उसके अंदर हमारी ख्वाहिश ये है कि हम हर कारवान काफिले के साथ 5-10 लोग।
मैं अर्ज करूँ सर, इसी जगह पे रोक दूँ आपको कि कोई भी नया कारवान ना बनाए, इसलिए कोई भी नया कारवान आप बनाएंगे उसकी अपनी रेपुटेशन नहीं होगी, उसका पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं होगा। जो जो जिसका बैकग्राउंड है ना, वो ऑलरेडी कारवान जिनके नवे नाम या नहीं ले रहा, जो मौजूद हैं, जो अच्छे कारवान हैं, लो कॉस्ट में भी हैं और अच्छे काम कर, अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को फोकस करें कि जिनकी अपनी फेस वैल्यू है। और आप मिसाल के तौर पर मेरा मशवरा है आपको कि आप 1200 आदमियों को कंसिडर करें कि यार ये 1200 है, मैं किसी तरह से कर रहे हैं। आप उनसे बात करें कि भाई वो आपको इंतहाई लो कॉस्ट दें। मिसाल के तौर पर मैं एक कारवान वाला हूँ तो मेरा वहाँ पर होटल है और मैं वहाँ के खर्चे तो आपको माइनस कर सकता हूँ ना। फिर ये जो पैसे हैं आप चाहे डोनेशन से अरेंज करें या खुद आपको पैसा दें, आप अपने पैसे से अरेंज करें और थोड़े थोड़े लोग करके भेजना शुरू करें। लेकिन कारवान दोबारा क्रिएट ना करें जिसका पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, जिसके पीछे कुछ भी ना हो।
ऑलरेडी कारवान बनता है
जो अब आप, ये मेरा मशवरा है आपको। बाकी
सर एक चीज़ और उसमें ऐड कर लें,
कर दें ऐड सर।
बात ये है कि ये आपकी बात को ही ऑन कर रहा हूँ कि जो लोग रह गए हैं या जो लोग भी करबला नहीं गए हैं, बहरहाल हक तो उनका भी है, जो ईरान से होके आ गए हैं उनका भी हक यही है कि रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर लें। खुदा के वास्ते इन लोगों पे, ये बहुत लुटे पुटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मजलूम लोग हैं, ये इनके ऊपर मज़ीद बोझ ना डालें,
ना डालें।
सलूशन सिर्फ यही है कि अगर आप कुछ इनके लिए कुछ कर सकते हैं, बेशक आप इनको थोड़े थोड़े करके भेज दें, लेकिन खुदा का वास्ते इनसे मजीद पैसे मत मांगो।
मैं अर्ज करूँ इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करें, ये वाकईतन मजलूम है लेकिन ये थोड़े से बेवकूफ़ भी हैं। ठीक, अब इस उसमें थोड़ा सा एक काम ये कर लें कि मेरा मशवरा है, ज़ायरीन जाने और जाने, मैं एक तरफ एक मशवरा ही दे सकता हूँ बस, आप इसको ईरान इदार छोड़ दें, आप सिर्फ इराक कर लें,
सिर्फ करबला करा दें,
सिर्फ करबला कर लें, इराक कर लें, करबला से मुराद इराक का नजफ, नजफ काजमैन और करब सब हो जाए, एक तरफ कर लें और फिर इनको वो कोशिशें करनी चाहिए ताकि ये मामला सलूशन की तरफ चला जाए। समझ रहे, और कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
एक छोटी सी सजेशन ये है मेरी कि जिस तरह आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है
जी,
बेहतर होगा मजीद इस प्रोग्राम को अगर आपने अच्छा करना है और मजीद सलूशन की तरफ जाना है, एक अच्छे आइडियाज अगर आपको मजीद लेने हैं इसमें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम 50 लोगों का ये प्रोग्राम एक आप और करें जिसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसे,
मैं याद करूँ आपको कि चीज़ जो है ना वो बहुत मैसअप होती चली जाती है, हम पूरी अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी कोशिश,
देखिए एक या दो लोग आदमी 1260 लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सर। ठीक है,
ठीक है, ठीक।
हर आदमी डसा हुआ है, हर आदमी तरसा हुआ है, आप कम अज़ कम उसमें 50 लोगों का तो एक ग्रुप करें जिसमें आप करूँ।
समीर भाई बात यह है कि अगर हमने ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया तो जितनी बातें हो गई हैं वो भी नहीं हो
पाएगी। यही सब 50 लोगों से ज़्यादा लोग तक पहुँच जाएगा।
यही आप ये अब जब आप अब फोरम पे आप बात करना शुरू करेंगे तो बहुत से सजेशन आपके पास और भी आ जाएंगे। इस प्रोग्राम को देखने के बाद PCN के पास और भी फीडबैक्स आएंगे तो हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे किसी तरह से काम करने की। ख्वाहिश ये है कि जिनके साथ ये जुल्म हो गया है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, उनको किसी तरह से रिलीफ दिया जा सके और उनको जो है वो किसी भी तरीके से, मेरा मशवरा यह है कि वो सिर्फ करबला, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा अमाउंट नहीं जिसमें आप ईरान इराक कर सकें आराम से। आप आराम से किसी भी, ये इराक भी नहीं करने का है, 60,000 रुपये में इराक भी जाना मुश्किल बात है, कर सकते हैं वो लोग जिनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, जो बहुत ज़्यादा जिनके अपने होटल्स हैं, जिनके अपने ज़राए हैं, जो वहाँ के मामला को समझते हैं वो कर सकते हैं,
जिनके काफला सालार
समझते हैं, जिनके अपने वहाँ पे लिंक्स हैं, एक डेढ़ साल वाले नहीं कर सकते सर, बहुत मुश्किल बात है। और इराक का पर्चा बहुत मुश्किल पर्चा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप बार बार टारगेट लेकिन कोशिश ये है,
लेकिन अगर ये काफला करबला निकल जाता तो मैं इनको 60 में ज्यारत करके
देंगे। ऑन अराइवल पे चांस था उसी पे हीरो हो सकते, आप सोच हीरो नहीं हो सकते,
इंसान की सोच से, इंसान की सोच पर लगा सकता। मैं प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ,
बात को उस पे नहीं करें, हम उस पे आते हैं सलूशन,
जो हम सलूशन की तरफ आते हैं। आपकी बात हमने बिल्कुल खुले
रेलेवेंट बात करते हैं
और आपने जो बोला है वो वैसे ही जाएगा, आप देख लीजिएगा। और मैडम ने जो बोला है और ऑन ने जो बोला, अभी भी अगर कुछ कोई पॉइंट या कोई ऐसी चीज आप समझ में आ रही है, चाहे सख्त हो, आप
कहना चाहते
हैं सिर्फ नाम जरूर में से वो कर देंगे, हम नहीं चाहते किसी का नाम हो। मजीद जो है हम आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, इंशाल्लाह
क्या नाम है उन साहब का जो वीज़ा लगाते हैं, जाफर नकवी साहब, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और फिर देखेंगे इसका सलूशन क्या है। अब अजीज़ा ने ग्रामी दरख्वास्त गुजार हूँ आपसे, पहले भी मैंने कहा था ज़ायरीन जाने से पहले बहुत सारे मामलों को सोचा करें। ये बात सही है कि ये काफिला मेरे हिसाब से, मैं ये समझता हूँ, अनाउंस ही ज़रा मुश्किल तरीके 1200 आदमियों को लेके जाना वैसे भी मुश्किल बात है। और जैसा कि उन जाफरी ने कहा कि उन्होंने 400 पे कहा था कि अब बस कर दो, और यकीनन मैं ये समझता हूँ और गुफ्तगू करने के बाद ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर बदनीयती शामिल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि पैसे जो हैं वो जिसके पास हैं, जो लग गए वो लग गए, जो थोड़े बहुत जो बचे हुए महसूस होते हैं कि हाँ जी ये अभी नहीं गए, वो बंदा ही गायब है। अली जाफर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं किसी भी तरीके से, मेरा मेरा पैगाम उन तक पहुंचता है, अगर वो ये समझते हैं कि वो भी इनोसेंट हैं और उनसे भी ये मिसमैनेजमेंट के तहत गड़बड़ हुई है और वो बदनीयत नहीं है, तो PCN से रابطہ करें। और जिस तरीके से उन जाफरी और समीना गौहर कैमरे के सामने आए, आप भी तशरीफ़ लाएँ और आके बताएँ कि इसका सलूशन क्या है। यकीन जाने अली जाफर कि ये आप क्या कर रहे हैं आप नहीं समझ सकते। ज़ाहिर है अब अब्दुल्ला अगर परेशान होगा और आप अगर उसके ज़िम्मेदार हैं तो आप भी खुश नहीं रह सकते। मैं आप तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ, देखते रहिए PCN, आपका अपना नेटवर्क, ये प्रोग्राम है मेरे अपनों के साथ, फिर किसी मज़ीद कुछ लोगों के साथ इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। आप देखते रहें PCN, आपका अपना नेटवर्क, आपका हौसला रिजवी, आपकी अपनी ज़बान।